जी उमेर साहब, वी आर लाइव। देखें, आना तो हमने कल था लाइव, पाकिस्तान हारा, लेकिन देखें मैं नाकाम हो गया आपको कन्विंस करने में। जी उमेर साहब का भी कल क्रिकेट मैच था, ठीक है। मैं इनको बोलता रहा, यार अपना मैच छोड़ दो, आके यूट्यूब का मतलब है, हम वीडियो शीडियो बनाते हैं। कहते हैं भाई क्रिकेट मैच खेलना है। अब हुआ ये भी हार गए, पाकिस्तान भी हार गया। क्यों उमेर साहब, हुन आराम है और
यार
खुश हो?
बिल्कुल यार बिल्कुल जलाल, बस वो आपको पता है थोड़ी बात पहले कमिट किया हुआ था, जाना था वहां पे। बल्कि मैं तो इस नियत से गया था कि शायद वहां पे जीत जाऊंगा तो पाकिस्तान इंग्लैंड वाला सदमे से थोड़ा बच जाऊंगा, लेकिन वहां भी मैं बहुत बुरा हार गया। और वापस जब आए पाकिस्तान इंग्लैंड का स्कोर कार्ड देखा और जब हाईलाइट देखी मैंने, तो मुझे तो मैं, आप समझे कल का दिन तो मेरा बहुत ही बैड गुजरा है। तो मेरे ख्याल में आपने कुछ दुआ शुआ की होगी कि उधर यार उमेर साहब आप परफॉर्म ना
नहीं नहीं
करो।
नहीं यार, बस देखो, बस प्लेयर प्लेयर की क्लास की बात है। आपने हारना ही था, मैंने तो पहले बता दिया था। अच्छा, वैसे अगर हम इससे स्टार्ट करें मैच से कि भाई खतरनाक किस्म की परफॉर्मेंस हुई है पाकिस्तान की, लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताओ कि इंग्लैंड की परफॉर्मेंस आपको कैसे लगी, खास तौर के ऊपर इंग्लैंड के जो बैटिंग यूनिट है उनकी इंटेंट कैसे लगी थ्रू आउट, उसके बारे में क्या कहते हो?
यार ये जो इंग्लैंड का इंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा थर्ड मैच पे। खैर मुझे सेकंड पे भी बहुत अच्छा लगा था, थर्ड पे भी हमने देखा कि उनका जो टॉप ऑर्डर है कोलैप्स कर रहा है, लेकिन नीचे से वो लोग इंटेंट ऐसा शो कर रहे हैं, एग्रेसिव जा रहे हैं, वो लोग रन बॉल को इतनी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, स्ट्राइक ले रहे हैं सही है, फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। तो मैं तो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ इंग्लैंड की बैटिंग से। और बल्कि हालांकि जब सीरीज स्टार्ट हो रही थी तो उस टाइम मैं सोच रहा था कि यार शायद इंग्लैंड जो है ना वो इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सके, क्योंकि अभी ये इंग्लैंड की टीम भी ही है एक तरह से। लेकिन बहुत अच्छा खेला है उनका विल जैक, जिसने फेस की है बॉल, यार कमाल का बैट्समैन है,
बिल्कुल
मतलब बड़ा मजा आया है। तो आप मुझे बताएं आपका क्या एनालिसिस है इंग्लैंड की बैटिंग के ऊपर थर्ड
नहीं
मैच
नहीं
पे?
बड़ा ज़बरदस्त है। हम पीछे भी बात कर रहे थे कि इनका कोई भी प्लेयर आउट होता है तो वो मोमेंटम को जो है वो जाने नहीं देते, और उसी तरीके से हर कोई जो है वो मारता रहता है, पॉजिटिव इंटेंट से खेलता है। देखो एलेक्स हेल्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, हमने देखा था लास्ट मैच में भी। इवन दो उन्होंने स्कोर किया, मतलब 150 वो कर चुके थे पहले मैच में शायद, लेकिन वो उस तरीके से फ्लुएंट नहीं नज़र आ रहे थे। तो विल जैक्स का देखो, उसने प्रॉपर शॉटें मारी हैं उस बंदे ने, ये भी नहीं कह सकते कि उसने स्लॉग मारे हैं, ठीक है। वो उसने भी बड़ी शॉटें मारी हैं। फिर बेन डकेट भाई, हम पहले भी बात कर रहे थे, ये हमारे स्पिनर्स को बॉल ही नहीं करने दे रहा बंदा, मतलब स्वीपें रिवर स्वीपें, ठीक है। और हैरी ब्रुक का तो हम पहले ही बात करें तो पता नहीं काफ़ी महीने हो गए हैं हमें ये कहते हुए कि भाई ये तो नेक्स्ट जो रूट के बाद अब यही नज़र आ रहा है इंग्लिश बैटर में, जो है ना सबसे अजीम जो बैट्समैन बन सकता है। तो क्या कहते हो भाई, ये हमारे
ऐसा
उस्मान
ही है
कादिर और नवाज को तो बिल्कुल नलिफाई कर दिया यार बेन डकेट की
यार,
स्वीपों ने।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही नलिफाई की है। और उस्मान कादरे तो खैर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। खैर उस पे आते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ कि विल जैक का जो रिकॉर्ड है जो T20 डोमेस्टिक पे जो खेल चुका है, क्योंकि उसने डेब्यू किया है अभी थर्ड मैच पे। तो पहले भी यार उसने 100 मैचेस खेले हैं ऑलमोस्ट T20 आईज सही है, और उसमें उसका स्ट्राइक रेट 150+ है,
ओ भाई,
और उसकी जो एवरेज है वो भी 29 एवरेज है। तो मतलब आप देखें यार क्या क्या वो क्लास का बैट्समैन है। और जब वो आया था खेलने के लिए ये जो कल का मैच हुआ उस पे भी उसने बड़ी अच्छी उसने इनिंग के लिए एग्रेसिव खेली, मुइन अली ने बड़ी तारीफ की उसकी। और उसके बाद जो आप हैरी ब्रूक की बात करें, हैरी ब्रूक के तो खैर हम भी अपनी सारी एपिसोड में पहले बात करते रहे कि यार ये एक स्टार नजर आ रहा है इंग्लैंड की टीम में। और वही हुआ जैसा मुइन अली ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में जो जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है उसमें बात की, तो मोइन अली ने स्पेशल रिगार्ड किया हैरी ब्रुक्स का कि यार ये बहुत कि ये बंदा बहुत ज्यादा टेक्निकल साउंड है और इसका फ्यूचर काफी अच्छा नजर आ रहा है।
नहीं,
तो
बड़ी
क्या ख्याल है?
बेहतरीन शॉटें मारी हैं यार उसने, देखो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मारी हैं, फिर उसने हारिस रऊफ को पिछले मैच में भी पुल पे 6 मारा था, इस मैच में भी पुल पे 6 मारा है। हर जगह वो बंदा खेलता है, रीच भी बड़ी है, लंबा भी है, और PSL में ही खेली हुई है। और उसने खुद बोला है कि पाकिस्तान मेरा सेकेंड होम है, तो मुझे यहाँ पे बड़ा मतलब ईजी महसूस होता है खेलते हुए, और लग भी रहा था जिस तरह हमारे बॉलर्स बॉलिंग करा रहे थे। काफ़ी जो है इनएक्सपीरियंस मुझे नज़र आया यार हमारी बॉलिंग यूनिट का भी, एक तरीके से अगर हम बोलें कि नो डाउट टैलेंट तो बहुत है, लेकिन जिस तरह हमने जिक्र किया था कि इंजमामुल हक ने भी लास्ट टाइम जो अपना वो पॉडकास्ट था कामरान अकमल के साथ, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि हमारा बॉलिंग यूनिट बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है लेकिन इनएक्सपीरियंस है। देखो एक वीडियो बड़ी फ्लोट हो रही है कि शादाब खान ने पीएसएल में बेन डकेट को आई थिंक दो दो दफ़ा आउट किया था, और दोनों दफ़ा बेन डकेट स्वीप कर रहे थे। तो शादाब ने क्या किया था, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पे बॉल रखी थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली
बिल्कुल
वो आपको पता ही है, वो पहले से स्वीप पे जाता है, तो आपको थोड़ी सी अपनी लेंथ जो है वो अगर आप फुल रखो तो चांस है एलबी या बोल्ड होने का। तो हमने नहीं देखा कि उस्मान कादिर ने ये कोशिश की हो, बल्कि उस्मान कादिर से तो मतलब बेचारे से लैंड ही नहीं हो रही थी। बिल्कुल वही प्रॉब्लम चल रही है जो हम जिक्र कर रहे हैं काफी महीनों से।
बिल्कुल ऐसा ही है, वही इशू चल रहा है। हाँ, कि वो जो फुल लेंथ बॉल करा देता है, और या तो फुल टॉस निकल जाती है उसकी बॉल, तो बैट्समैन को रूम मिल जाता है, बैट्समैन छक्के छक्के मार देता है। अब कल के मैच में मैं देख रहा था कि उस्मान कादिर, हाँ यहाँ पे एक और सवाल मेरा आपसे है, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि उस्मान कादिर का हमने देखा कि उसने दो विकेट ले ली थी, ठीक है। विकेट भी कैसे ली, कि पहले उसने बाउंड्रीज खाई, सही है, बैट्समैन एग्रेशन शो कर रहे थे उसको, लेकिन फिर उसके बाद बाउंड्रीज पे जाके कैच हो रहा था। तो उस्मान कादिर के हम देखें कि वो विकेट तो एक तरफ ले रहा है, ठीक है, हमने पहले वाले मैच में भी देखा उसके पास चांस बने विकेटों के। अब यहाँ पे T20 में जब हम बात करते हैं उस्मान कादिर की, तो यहाँ पे इकोनॉमी ज्यादा मैटर करनी चाहिए या एकदम एग्रेशन में विकेट्स वगैरह उसकी जो गिरे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
यार
क्या
देखो
कहते हैं?
दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन उस्मान कादिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, ठीक है। वो बिल्कुल मिडिल में ना आपका कंट्रोल ही खो देता है। अब हो ये रहा था कि नवाज़ नॉर्मली बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा होता है, बड़ा इकोनॉमिकल होता है, लेकिन नवाज़ को भी फेंटी पड़ रही थी और फिर साथ उस्मान को भी पड़ रही थी। अगर एक को पड़ रही हो ना तो फिर आप सह लेते हो, दोनों को पढ़नी शुरू हो जाती है। और उस्मान का कंट्रोल नहीं पता ना, आप देखो बाबर बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था उस दिन भी, कप्तानी से बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि भाई तू आगे
बिल्कुल
क्यों फेंक रहा है, आगे क्यों फेंक रहा है, ठीक है। वो आगे जब वो आगे की वजह से वो पीछे करने की कोशिश करता था, शॉर्ट बॉल हो जाती थी। तो वो तो मसला चल रहा है। हम ये नहीं कहते कि उस्मान कादिर विकेट टेकर नहीं है, बहुत बड़ा विकेट टेकर बॉलर है, बड़ा टैलेंटेड बॉलर है, लेकिन वो दिन कब आएगा जब कंसिस्टेंटली बॉल इसकी लैंड होगी। हमने देखा था शादाब पे भी ये टाइम आया था कि शादाब मतलब जब इंजरी के बाद आया था तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, लोग उस पर भी बात कर रहे थे कि अब ये शादाब ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। टाइम आता है, लेकिन अब ये टाइम आपको ना डोमेस्टिक में पूरा करना चाहिए, बजाय इसकी क्या पाकिस्तान टीम में आके एक्सपेरिमेंटेशन करो। अब वर्ल्ड कप भी जा रहा है ये बंदा।
बिल्कुल यार, वर्ल्ड कप जा रहा है, लेकिन यार जलाल ये दुआ करें कि शादाब वापस आ जाए टीम में, क्योंकि अगर ये जाता है वर्ल्ड कप, अगर शादाब इंजर्ड वहां पे रहता है, तो फिर तो बॉस इश्यू काफी ज्यादा है।
बहुत बड़ा
जहां पे
इशू।
हम 200 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां पे 220 230 हो जाएगा। लेकिन यार मुझे एक बात नहीं समझ आ रही जलाल, जो मुझे थोड़ा आप बताएं, हमने पहले भी बात किया एपिसोड्स में, कि यार जो बाबर आजम है, ठीक है, वो अपना सिक्स बॉलर क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहा? हम देखते हैं कि इफ्तिखार भी ऑप्शन उसके पास आती है, जो खुशदिल है, जिस तरह आप लास्ट एपिसोड पे बात कर रहे थे कि खुशदिल पीएसएल में बड़ा अच्छा परफॉर्मर रहा है, उसको भी वो ट्राई नहीं कर रहा। कॉन्फिडेंस का इशू है या मुझे नहीं समझ आ रही, आप बताएं क्या इसमें क्या समझते हैं आप?
यार पता नहीं यार, स्टबननेस ही लग रही है कि एक सेट पैटर्न शायद सोच के आता है कि जी ये होगा तभी मैं इन बॉलर्स को लाऊंगा। हालांकि डकेट के आगे आप इफ्तिखार को तो ला ही सकते थे, ठीक है, ट्राई करना था ना, फेंटी तो
हाँ
पड़ रही थी
बिल्कुल
दोनों को, नवाज को भी और उस्मान को भी।
बिल्कुल
अच्छा फिर एक और आर्गूमेंट भी लोग ये करते हैं कि भाई डकेट जो है स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर से थोड़ा सा वो स्ट्रगल करता है, तो क्या आप उस टाइम के ऊपर एक आध ओवर फास्ट बॉलर से करा सकते थे या नहीं करा सकते थे। तो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि लगातार वो स्पिन के ओवर्स चल रहे थे, लगातार वो आपको स्वीपें और रिवर्स स्वीपें मार रहा था, कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा था। कल के मैच में और पिछले मैच में सिर्फ डिफरेंस ये नज़र आया था कि फील्ड पोजीशंस थोड़ी सी आपको नज़र आ रही थी कि वो स्वीप के अकॉर्डिंगली खड़ी की हुई है, वो एक बेहतर चीज़ थी। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था, मतलब नहीं समझ आई कि इफ्तिखार को क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे। क्या कह सकते हैं यार बाबर।
हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल ये आप सही बात कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबर आजम, मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजी उनकी जो होती है, वो मतलब वो चेंज नहीं करते पिच पे आके, थोड़े से वो ही रखते हैं कि यार उसी तरह से हमने चलना है, वही करना है, अल्लाह करे थोड़ी इम्प्रूवमेंट आए।
फिर बाबर आजम को जब क्रिटिसाइज करो तो बाबर आजम कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाता ठीक है, कोई फर्क नहीं
या वो
पड़ता।
बिल्कुल वो क्रिटिसिज्म की बात करें, तो मुझे तो आज वो सिकलैन मुश्ताक की देख रहा था कॉन्फ्रेंस, उस पर भी काफी ज्यादा एतराजात है, लेकिन खैर उस पर आते हैं आगे। तो आप मुझे बताएं, हैरी ब्रूक की बैटिंग कैसी लगी?
यार बेहतरीन बैट्समैन है वो भाई, उसने तो दिखाया है प्रॉपर बैटिंग इस तरह करते हैं। अब हमारे बैट्समैन तो बेचारे बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे बैट्समैनों पे आते हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी बॉलर्स का देखो लैक ऑफ एक्सपीरियंस की जब हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे फास्ट बॉलर्स हमारे, देखो हमारी फास्ट बॉलर्स के पास भी पेस है, 150 वो भी मारते हैं, लेकिन अगर आप देखो मार्क वुड की और मार्क वुड के बाउंसर्स देखो आप, नो डाउट मार्क वुड ने आउटपेस कर दिया पाकिस्तानी बॉलर्स को. उसने 97 माइल्स की बॉल कराई, उसने 156 केपीएच से ऊपर उसने बॉल फेंकी है और उसने अपनी पेस को यूटिलाइज किया है. उसने लेंथ ऐसी रखी है, उसने लाइन ऐसी रखी है कि उसने डराया आपके, मतलब बैट्समैनों को डराया. हमारे पहली बैट्समैन 135 का बाउंसर नहीं खेल सकते वो 156 पे बाउंसर करा रहा है. तो अब हमारे बैट्समैनों को ये नजर, हमारे बॉलर्स ने ये नहीं यूटिलाइज किया
बिल्कुल. और अभी आप देखिए हमने ऑस्ट्रेलिया भी जाना है
बिल्कुल,
और ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट पिच बॉल कितनी ज्यादा आएगी. आप मतलब देखिए आपके पास वहां पे रबादा है, नौजा आएगा आपके अगेंस्ट, आपके आपके अगेंस्ट बुमराह आएगा, सही है. तो आप वहां पे किस तरह करेंगे. बिल्कुल सही है, जिस तरह वुड ने जो बॉल कराई है, जो हैदर अली को कराई है, इफ्तिखार को कराई है, तो काफी ज्यादा वो थी.
देखो बाबर आजम भी बीटन फॉर पेस हुआ ना वो, कि भाई वो कट मार रहा था, वो कट जाना चौका ही छक्का ही था, लेकिन वो इतनी ज्यादा पेस थी उसकी कि वो उसका एज लग गया और वो फाइनर चला गया. उसके कैच के बारे में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका पाँव टॉपली का पाँव बाउंड्री से लग रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं लग रहा था. वो भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल सा है कि उसको रिव्यू नहीं किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो छक्का था. तो अब देखते हैं, अब तो खैर पाकिस्तान जो होना था वो हो गया है. अच्छा अगर पाकिस्तानी बैटिंग पे आप
अभी तो जलाल, एक और बात बस ऐड करूंगा इंग्लैंड की बॉलिंग पे. हमने देखा इस मैच में रीस टॉपले आया वापस,
बिल्कुल
सही है, और वो भी बड़ी अच्छी उसने बॉल कराई है, बड़ी अच्छी उसने चेंज ऑफ लेंथ किया था, जिसपे उसने आई थिंक विकेट ली थी मोहम्मद रिजवान की. पहले वो 140 पे करा रहा था, नहीं सॉरी 138-137 पे था, लेकिन जिस बॉल पे रिजवान को आउट किया तो वो भी बॉल बड़ी कमाल की थी. 118 माइल्स पे वो एकदम उसने बॉल स्लो करा दी 118 किलोमीटर पे, तो वो भी बड़ा अच्छा एक रीस्टॉपले. अभी देखे ये कि यहाँ पे भी सारे बॉलर्स नहीं इंग्लैंड के, आप ये चीज कंसीडर करें. वर्ल्ड कप पे हमारे पास तबाही जो कि मतलब हमारे जो मैचेस होंगे वो तबाही बॉलर्स के साथ होंगे. अभी तो ये वही है जिन्होंने एक सीरीज पहले खेली हुई है, दो सीरीज पहले खेली हुई है, तो बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन है
यार. आप ये देखो ना कि आपसे वो नहीं हुआ, सैम करन का बाउंसर इफ्तिखार से नहीं हुआ, जिसपे अभी आप बता रहे थे मीम भी चल रही है रॉजर फेडरर को क्या उसे कहते हैं
ट्रिब्यूट
देने वाली, फोर हैंड मार रहा था, मतलब चंडी मार रहा था लगता है, शॉट तो नहीं मार रहा था
नहीं वो उस टाइम सोच रहे होंगे ना कि यार मैं भी हो सकता है, जिस तरह धोनी की शॉट मशहूर हुई थी हेलीकॉप्टर शॉट, तो उस तरह मैं भी मारूंगा, हो सकता है मेरी भी मशहूर हो जाए. लेकिन वाली मशहूरी के लिए आपको काफी काम करना चाहिए, वर्क अराउंड बहुत ज्यादा जरूरत होता है उसके लिए. तो वो शायद बड़ा अजीब सा सीन हुआ. अच्छा हुआ उनके साथ ट्विटर पर जो चल रहा है ना इस टाइम
यार. देखो अब इससे एक चीज, उस शॉट से ना एक चीज साबित होती है कि इफ्तिखार ऑब्वियसली शॉर्ट बॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. तो बॉलर को आप क्रेडिट दो कि बॉलर किस तरह अपनी लेंथ को चेंज कर रहे थे और कितना मिक्सअप कर रहे थे पेस को, लाइन और लेंथ को, कि आपके बैट्समैन वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था. मतलब हर बॉल पे बाउंसर कराना भी आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हो, हर दूसरी बॉल पे शॉर्ट बॉल करा देना ये इस तरीके से. उसने मतलब ऐसे प्यारे टाइम के ऊपर शॉर्ट बॉल कराई है कि इफ्तिखार रेडी था कि भाई ये आगे ही मारेगा, और इफ्तिखार ने शायद सोचा हुआ था उस बॉल पर कि मैंने मारना ही मारना है. ठीक है, वो शॉर्ट बॉल आ गई और वो बस अपनी वो गो विद द फ्लो पे वो चला गया. हमारे बॉलर्स ने ये काम हमें दिखाई नहीं दे रहा. हालांकि शुरू में हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की है, इवन मैं ये बोलूंगा थोड़े से फास्ट बॉलर्स हमारे अनलकी भी गए हैं, एजेस आउटसाइड एजेस में शुरू में बहुत चौके गए हैं. ठीक है, तो वो भी थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा, लेकिन स्टिल यार आपको अपनी पेस को यूटिलाइज तो करना चाहिए, बैट्समैन बढ़ाना चाहिए
मेरे ख्याल में. बिल्कुल, लेकिन स्टार्ट का ओवर हसनैन का सही था, लेकिन शाहनवाज धानी की यार बॉल जब वो चौके छक्के खा रहा था उसने कोई वेरिएशन नहीं लाया उस टाइम. हो सकता है ये उसका एक्सपीरियंस शायद अभी तक इतना नहीं है, जिस वजह से वो इस वाले लेवल पे नहीं सोच सक रहा.
हाँ देखो शाहनवाज धानी का जो पहला ओवर था ना उसमें एक ही चौका था जो प्रॉपर चौका था. ठीक है, बाकी एज वेज भी लगे थे, वो बाबर आजम ने स्लिप भी हटा दी थी, तो पहला जो एज पे चौका गया वो स्लिप में कैच भी हो सकता था. तो आप कैप्टेंसी पे भी थोड़ा कह सकते हो कि शुरू में आप विकेट्स तो लेनी चाहिए आपको. एनीवेज उमर साहब अब ये तो चलता रहेगा, बाबर की कप्तानी पे भी थोड़ी बात होती रहेगी, लेकिन ऑब्वियसली यंग कैप्टन है, हम उसे बैक करते हैं कि एक ना एक दिन आएगा एक ना एक दिन आएगा. हैं आप ये बताओ कि बाबर आउट होता है, रिजवान आउट होता है, पिछले मैच में यही दोनों मैच कर गए थे पूरा, मतलब 203 कर गए थे, ठीक है कोई आउट नहीं हुआ। हम उस टाइम पे सारे पाकिस्तानी अवाम बड़े उछल रहे थे, हमारे भी इधर कमेंट्स में सारे कह रहे थे पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, ये हो गया बाबर किंग इज बैक फलाना फलाना। हम उस टाइम भी कह रहे थे कि भाई थोड़ा हाथ वाला रखो, अभी एक मैच जीते हैं, मिडल ऑर्डर का अभी नहीं पता लगा, वो अनटेस्टेड है, ठीक है अभी इशू उसी तरह है। वही हुआ मेरी जान, मिडल ऑर्डर फिर अभी कंसर्न है, लेकिन शान मसूद पॉजिटिव है एक।
बिल्कुल शान मसूद पॉजिटिव है, और वही बात है, हम लोग लास्ट एपिसोड में भी बात करते हैं ये वाली कि हमारा मिडल ऑर्डर पे कोलैप्स आ रहा है काफी ज्यादा, सेकंड डाउन थर्ड डाउन हम लोगों का नहीं समझ आ रही किसको लाना है, फर्स्ट डाउन का भी इशू आ रहा था। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी हुई जलाल के, जिस तरह आप बता रहे कि शान मसूद ने परफॉर्म किया, एटलीस्ट हमारा एक एंड जो है ना, जो आपका सेकंड डाउन वाला है वो वाला स्टेबल हो गया। अब जो इशू आ रहा है मिडल ऑर्डर पे वो आ रहा है आपका वन डाउन, सही है, आपका थर्ड डाउन और फोर्थ डाउन आपने किस तरह यूटिलाइज करना है। मतलब के मैं जैसे शान मसूद की ये पोजीशन मेरे ख्याल में अच्छी है, मेरे ख्याल में यही पोजीशन इस तरह से भी अच्छी है कि शुरू में हम देखते हैं बाबर रिजवान थोड़ा स्लो स्लो आते हैं, ठीक है 8 पॉइंट मतलब के स्ट्राइक रेट 120-125 के साथ आते हैं, बाद में हैदर अली आता है, हैदर अली से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हम चाहते हैं वो उस लेवल पे नहीं आ रहा अभी, देखते हैं आगे आता है या नहीं, लेकिन वहां पे एक हमें प्रॉपर स्ट्राइकर चाहिए आसिफ अली की तरह जो के 150-160 की स्ट्राइक रेट से खेले, अगर वो आउट होता है तो फिर नीचे शान मसूद हो जो के आपकी इनिंग को आखिर तक लेके चले, मतलब थोड़ा एग्रेशन भी दिखाए, वो स्काई वाली इनिंग की अगर मैं बात करूं वो वाला थोड़ा सा हमें नजर आए। क्या कहते हैं आप पाकिस्तान?
यार देखो पहले मेरी भी थिंकिंग थी लेकिन अब आई एम लीनिंग टूवर्ड्स के शान को वन डाउन पे आना चाहिए। पहले मैं भी यही सोचा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हैदर से कि हैदर थोड़ी गेम में चेंज लाएगा और थोड़े सिंगल डबल निकालेगा, लेकिन लग नहीं रहा कि हैदर की गेम में वो सिंगल डबल वाली गेम नज़र आ रही है। शोएब मलिक ने भी ये पॉइंट आउट किया है कि हैदर जो है बहुत हार्ड हैंड से खेल रहा है, और वो अगर सिंगल के लिए भी शॉट मारता है तो वो पूरी मतलब कुल्हाड़े की तरह ही शॉट मारता है, कोई वो मैनूवरिंग ऑफ द बॉल नहीं नज़र आ रही। तो ऐसे अंदाज में आपको लगता नहीं है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट ये स्ट्राइक रोटेशन वाले सीन हैदर का उस तरीके से चलेगा? हैदर अंडर प्रेशर आ जाएगा मुझे लगता है स्पिनर्स के अगेंस्ट। दो ही ऑप्शन रह जाती हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट हैदर के पास, या तो छक्के मारने की कोशिश करे या आउट हो जाए, सही है, जो अभी उसकी गेम लग रही है, दरमियान वाली गेम नहीं लग रही। तो शान को हमने देखा है जो उसने इनिंग्स खेली है कि वो सिंगल डबल भी करता है, मतलब स्वीपे भी मारता है, और स्पिनर्स के अगेंस्ट एग्रेसिव ऑप्शन भी लेता है, मिड विकेट वगैरह के ऊपर छक्के छक्के मारता है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर भी चौका मार लेता है, तो वो मुझे एक बेटर ऑप्शन लग रही फिलहाल। और देखो स्ट्राइक रेट भी शान का बिल्कुल मुनासिब था, बिल्कुल ठीक था,
बहुत अच्छा, बहुत नहीं यार बहुत अच्छा था मेरे ख्याल में,
हाँ
160 प्लस किया उसका,
हाँ तो उस हिसाब से मुझे शान ठीक लग रहा ऑप्शन।
मैं उस हिसाब से सोच रहा था ना कि जैसा देखिए बाबर रिजवान फिलहाल तो चले आउट हो गए पहले, लेकिन अगर डाउन द लाइन हम देखते हैं कि एक बंदा आउट होता है, एशिया कप पे देखा गया बाबर आउट हो रहा था, रिजवान कोई जो रिजवान था इनिंग लेके चल रहा था, तो वो वाली सिचुएशन में एक एंड पे आपका स्ट्राइकर होना चाहिए, मतलब जो ना 160 प्लस से शुरू से ही खेले। फिर मैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि वहां पे आपका वन डाउन पे 160 प्लस वाला है, फिर शान मसूद आए ताकि अगर ऊपर से आपको कोलैप्स हो जाती है बैटिंग तो फिर शान मसूद नीचे आराम से खेले।
यार देखो मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन अब बात ये लग रही है ना कि शान भी तो उसी मोड में खेल रहा है, या तो शान ना खेल रहा हो, सही है। अब हैदर अली से हमारी एक क्या उसे कहते हैं दिमाग में हमने एक इमेज बनाया हुआ है कि हैदर अली इस तरह खेलता है, अब वो नजर तो नहीं आया उस तरह खेलते हुए। जब वो खेलेगा तो फिर आप बात करो ना, अभी एट प्रेजेंट तो आपको शान की परफॉर्मेंस फार बेटर लग रही है, वो स्ट्राइक रोटेशन ले लो, बॉल स्ट्राइकिंग ले लो, ठीक है ओवरऑल स्ट्राइक रेट ले लो, और एवरेज भी देख लो, तो उस हिसाब से तो मुझे शान बेटर ऑप्शन लगती है। और देखो फिर बाबर और रिजवान को थोड़ी कुशन भी मिल जाता है कि यार अगर तीसरे पे बंदा सॉलिड आ रहा है, वो हमने देखा था फखर जमान के साथ भी यही मसला आ रहा था ना कि आपका तीसरा नॉन एग्जिस्टेंट चल रहा है इंडिया की टीम में, विराट कोहली आता है तीसरे नंबर पर, न्यूजीलैंड की टीम में केन विलियमसन आता है, आप बड़ी टीमें उठा के देख लो, बड़ा अच्छा बैट्समैन स्टेबल बैट्समैन तीसरे नंबर पर आता है, हमारे यहाँ तीसरे नंबर पे हमने बस रखा हुआ है कि चल गए तो चल गए, वरना फिर क्या कह सकते हैं यार। मुझे तो अब
यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जिस तरह बाबर रिजवान अगर आपके 11-12 ओवर वो खेल लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप फिर वन डाउन किसको लाएंगे, अगर वो पे सिनेरियो बेस्ड होगा
यार? देखो सिनेरियो बेस्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखो जैसा शान ने कल खेला है तो 160 स्ट्राइक रेट इज फाइन एज लॉन्ग एज मतलब वो अगर 11-12 तक आ जाते हैं, हाँ अगर 15-16 ओवर तक ये लोग बाबर और रिजवान चले जाते हैं, जो कि कोई इनसे बईद नहीं चले भी जाए, फिर ऑब्वियसली आप अपना कोई हिटर भेज देते हो। अच्छा एक चीज़ है, मुझे बताओ, शान पे तो काफ़ी बात होगी और ऑब्वियसली हमें पता है तीसरा चौथा नंबर हर किसी के अपना आर्गुमेंट है, तो टीम मैनेजमेंट का भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा और वो होना भी चाहिए, वो तो बात समझ आती है। अच्छा अब खुशदिल को मिल गए हैं चांसेस काफ़ी, ठीक है, और उस पर बात भी हो रही है, आप उसे बॉलिंग भी नहीं करा रहे, कैच भी उसने ड्रॉप किया है, और हमने नेदरलैंड वाली सीरीज में भी देखा था कि खुशदिल से फील्डिंग में एरर्स हो रहे थे, फलाना हो रहा था, जो भी हो रहा था। अब आप क्या कहते हो कि हैदर सॉरी खुशदिल को पूरी सीरीज दें, या अब इट्स टाइम कि आप आमिर जमाल वगैरह को भी देख लो, ताकि क्या पता है एक सरप्राइज एलिमेंट आपको मिल जाए आमिर जमाल की शक्ल में?
यार खुशदिल की जिस तरह मैं बात करूं, जिस तरह हम लोग लास्ट एपिसोड्स पे भी बात की है थोड़ी, कि जो खुशदिल है उसका जो उसकी जो परफॉर्मेंस आती है वो आती है 14वें 15वें ओवर के बाद आ रही थी काफी ज्यादा ना, आखिरी ओवर्स में आता था, 18th 19th ओवर में आता था, तो उस टाइम हम लोग उसकी उस तरह एग्रेशन को जज नहीं कर सकते थे, मतलब कि उसका स्टाइल ये नहीं था जो जिस तरह कि वो एकदम पहली बॉल से ही मारे। तो लास्ट मैच में हमने देखा उसको काफी ज्यादा रूम मिला, मतलब उसके पास काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने आप को अपने आप को स्टेबल पोजीशन पे ले आए, लेकिन जिस वो स्टार्ट में थोड़ा बेहतर खेला, मतलब स्टार्ट की जैसे उसने 12 बॉलों पे 23 रन मारे वो वाला ठीक इंटेंट था, उसने छक्के भी मारे, मतलब स्ट्राइक पकड़ रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं समझ आई क्या शायद वो स्ट्रगल करना शुरू हो गया बैटिंग में, जिस तरह उसने आखिरी जैसा उसने स्कोर 29 मारा आई थिंक और 20 बॉलों पे मारा है ना इस तरह, तो 8 बॉलों पे सिर्फ 6 रन मारा है, तो वो जो 8 बॉलों पे 6 रन उसने मारा है वो वाला काफी ज्यादा गैप क्रिएट कर गए इसकी परफॉर्मेंस के लिए, मतलब कि इसकी इसकी सिलेक्शन पे कि इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जिस तरह आपका जो सवाल था कि इंग्लैंड के फोर्थ मैच पे इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, मेरे ख्याल में इसको शायद चांस देना चाहिए, एक
ठीक
और
है।
चांस देना चाहिए, लेकिन इसके माइंडसेट पे थोड़ा ये काम करना चाहिए कि आपने जहां पे 12 बॉलों पे 23 मारा है आप वही वाला स्ट्राइक रेट आगे लेके चलो और थोड़ा एग्रेशन दिखाओ, मैं ये समझता हूँ कि शायद इस तरह होना चाहिए इसका, आप क्या कहते हैं?
यार मेरा ख्याल है अब काफ़ी हो गई है, अब आप जो है एट मैक्स आप एक चांस दे सकते हो। मुझे लगता है आसिफ इसलिए नहीं खेल रहा, शायद वो जो सकलैन ने बात की थी एशिया कप के उनकी, वो क्या उसे कहते हैं टांके शंके लग गए थे हाथ में, तो शायद आसिफ भी इंजर्ड हैं, इस वजह से वो नहीं खेल रहे, वरना शायद खुशदिल खेल ही ना रहे होते।
लेकिन
तुम
वो
प्रैक्टिस
प्रैक्टिस कर रहे हैं आसिफ अली, मैंने
तो
उसकी
वो उस
वीडियो
मैच में भी
देखी
कर रहे थे, सिले हुए हाथ से खेल रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, अनफिट बंदे को खिलाया हुआ था। लेकिन अब देखो खुशदिल के
बाकी
पास
जलाल
एक ही अपॉर्चुनिटी
बाकी
है।
जलाल आप
एक चीज मैं बोलूंगा बस, कि देखो आप खुशदिल के साथ या आसिफ के साथ या इफ्तिखार के साथ थोड़ी सी कभी कभार ये प्रॉब्लम होती है, जो कि एक जस्टिफाइड प्रॉब्लम है, कि कभी कभार वो ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि मैच बिल्कुल ही हाथ से निकल चुका होता है, जिस तरह कल का था ऑलमोस्ट हाथ से निकल चुका था। तो अब खुशदिल के पास ऑप्शन ये थी, या अपने लिए खेले या टीम के लिए खेले, सही है। तो उसने पहले शुरू में कोशिश की मारने की और एंड में उससे लग नहीं रही थी। सेम गोज विद नवाज। अब अगर आप देखो ना, ये मैच थोड़ा सा हम फंसा सकते थे अगर खुशदिल और नवाज जो है ना वो सही खेल जाते। देखो खुशदिल की आखिरी 8-1 गेंदें बिल्कुल ऑलमोस्ट जाया गई, नवाज ने 21 गेंदों पे आई थिंक 19 रन बनाए। अगर वो 21 पे 50 कर देता और खुशदिल जो है अपनी आखिरी 8 गेंदों में चलो कुछ और नहीं तो 15-20 रन बना देता, तो आखिरी 2 ओवरों में पाकिस्तान चेस कर रहा होता ऑलमोस्ट 40, ठीक है, समवेयर अराउंड 38-40, वहाँ मैच फंस सकता था, ठीक है, कि वहाँ प्रेशर में आ जाता है। ऑब्वियसली मैं नहीं कहता पाकिस्तान जीत जाता, लेकिन एटलीस्ट आप रिस्पेक्टफुली थोड़ा सा हारते।
जाते
इंग्लैंड की टीम का हमें ये पता है कि ये कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, अगर सेम इंग्लैंड की टीम इस सिचुएशन में होती ना उमैर, वो जरूर मैच को फंसा देते, वो मैच को फंसा देते, ठीक है।
नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है, जिस तरह नवाज की बैटिंग काफी स्लो खेला वो, और जिस तरह 8 बॉलों की जो आपने जिक्र किया खुशदिल का, मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ, बड़ा अच्छा पॉइंट लगा है कि अगर ये वहां से एग्रेशन शो करते तो हो सकता है शायद ये रिस्पेक्टफुल वे में हारते, तो ये बड़ी अच्छी बात की है, बड़ा अच्छा एक पॉइंट है, तो इस तरह करना चाहिए। अब यहाँ पे वही बात है कि अब ये वाला रोल जो दिया गया है खुशदिल को वो उस पर उतरे ना उतरे वो भी
अभी
एक
तक तो
बात
यार नहीं उतर
है।
रहा, मेरा ख्याल है अब एटमोस्ट एक मैच ही बनता है उसका। अगर आपने वो आमिर जमाल को डाला हुआ है तो उसको भी अब आप टेस्ट तो करोगे ना, अब एक मैच खिला के तो आप नहीं देख सकते उसको, फिर फायदा क्या है उसको स्क्वाड में डालने का। अब फिर अबरार है,
हाँ
अब उस्मान कादिर से भी परफॉर्मेंस तो नहीं हो रही।
बिल्कुल
अब आप एक मैच उसको, दो मैच उसको भी, दो लड़के को, ताकि आपको पता लगे कि अबरार में भी कितना दम है, ठीक है? वरना स्क्वाड में डालने का फायदा क्या है जब आपने सिर्फ घुमा
बिल्कुल
घुमा के ही लेके जाना है उनको, वरना उनको फिर कुछ और खेलने दो। अच्छा ये तो हो गया, अब थोड़ी सी
हाँ बिल्कुल।
मसालेदार मसालेदार।
अच्छा बाकी यहाँ पे जनाब ये भी बोलूंगा, आप मतलब वो सुबह सुबह उठ गए आज, तो थोड़ा मुझे लग भी रहा है आप शायद नींद में भी थे थोड़ा, तो अच्छा है आपने थोड़ी मोटिवेशन दिखाई है, क्योंकि
बस
आपको
देख ले
बताया था
जी,
जाना
इधर
है
इस टाइम के
यूनिवर्सिटी
ऊपर क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है। अभी सात
क्या
सात
टाइम हो रहा
बीस
है
हो रहे हैं,
आपको?
7:20 हो रहे हैं, तो मैं उठा हूँ सुबह 5-1 बजे उठा हूँ, तो थोड़ी सी एनर्जी थोड़ी डाउन है, लेकिन आप आज
नहीं
एनर्जी मेरी
वो
पूरी कर रहे
बिल्कुल, वो आपकी शक्ल से भी लग रहा है, वो आपकी शक्ल से भी लग रहा है कि थोड़ी सी एनर्जी लेवल जो है ना आपका डाउन हुआ हुआ है, लेकिन ठीक
अच्छा
हो
मुझे
जाएगा।
एनर्जी मेरी बढ़ाओ ना, अब एनर्जी बढ़ाओ। एनर्जी किससे बढ़ाओगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती
खैर
है सकी भाई
देखें
की।
यार ये तो वही बात है, आपका निजाम है, कुदरत है, दिन होती है शाम होती है
नहीं नहीं क्या
इस
था क्या
बात पे
था,
आदत
याद करने दो। रात दिन रात, सर्दी गर्मी, बारिश हवा, पता नहीं घटा, कुदरत का निजाम है ये तो होगा। मतलब उन्होंने कहा कि हार जीत कुदरत ने लिखी हुई है, हम आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, कि कुछ दिन आएंगे आप जीतोगे, कुछ दिन आप आएंगे हारोगे, जिस दिन हार गए क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत है, ये तो कुदरत की कहानी है, लिखी हुई है तो लिखी हुई है तो लिखी हुई है। हैं
यार
अब हम अपना चैनल वैनल बंद कर दें,
ये
फिर अब क्या करें फिर हम, हैं?
बड़ी अजीब बात की यार, बल्कि मैं तो बड़ा एक अजीब लगा उनसे जब पहला सवाल किया गया मिडल ऑर्डर पे, वो भी सवाल था उस पे भी वो सही आंसर नहीं किया, सेकंड पे फिर वही कुदरत वाली बात ले आए, तो फिर उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात की, मेरे ख्याल में काफी मोटिवेशनल वो किताबें भी पढ़ते रहे, कासिम अली शाह की वीडियो देख के आए होंगे, कुछ इस तरह भी किया होगा उन्होंने उन्होंने तो बड़ा एक अजीब सी यार, मतलब आप देखो टेक्निकल डिस्कशन के लिए लोग आए, लोग भी इतने विले तो नहीं है कि वो आएंगे इस तरह की मोटिवेशनल बात से वो बातें सुनने आए, उनके पास भी जाहिर है एक टाइम निकाल के आए, एक टेक्निकल सवाल करें और सवाल बड़े अच्छे सवाल थे वो, उस पे जी वो वही बात है भाई, कुदरत लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बातें स्टार्ट कर दी, तो बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट है कि पाकिस्तान के हेड ऑफ कोच आप हैं सही है और आप इस तरह का बात करें, आपको चाहिए टेक्निकल आंसर करें इस पे, फिर वो एक और जर्नलिस्ट थे जब चौथा चौथा सवाल था पता नहीं पांचवा सवाल था, जिसपे जर्नलिस्ट ने सवाल करने से पहले ये बोला आप थोड़ा कुदरत को साइड पे रखें थोड़ा टेक्निकल आंसर करें हम आप इस बात पे, तो फिर शायद सकलैन मुश्ताक को याद है कि यार यहाँ पे मैं एक टेड कि यहाँ पे मैं एक टेड टॉक से नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आया हूँ, तो वो फिर उन्होंने बड़े उस पर फिर उन्होंने थोड़ा बेहतर आंसर किया, लेकिन वही बात है कि थोड़ा
अच्छा
काम करना
खुशदिल के
चाहिए
बारे
स्पीच
में भी
पे।
उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई बोले ना कि पूरा दिन कि यार आप बिल्कुल जो है अच्छे नहीं दिखते, आपकी शक्ल ऐसी है तो आपकी वैसी है, तो फिर हर रोज आपको कोई इस तरह बोलता रहे, आप आईने में जाके देखेंगे आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। अब देखो क्या करें हम भी, अब मसला है ना, अब खुशदिल ने बैटिंग नहीं कर रहा वो, ठीक है, बड़ी मुश्किलों से डबल फिगर में जा रहा है वो आजकल। अब क्या हम ये बोलें कि खुशदिल ने कल 35 गेंदों के ऊपर 100 मार दी, पाकिस्तान खुशदिल में बहुत तेज बैटिंग की, मतलब है 12 छक्के मार दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मैच नहीं जीत सका। अब आप रियलिटी भी ना बताओ, मतलब हम ये कोई पर्सनल होके क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे खुशदिल को कि खुशदिल भाई ने ये कर दिया, खुशदिल भाई पता नहीं रात प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे तो इस वजह से कैचेस छूट रहे हैं, हम ये तो नहीं कह रहे। या जिस तरह रिजवान दिल पे ले गए थे कि भाई अगर हम पाकिस्तान के लिए ना खेल रहे हो तो अल्लाह हमें जलील करे, मतलब किसी ने आज तक ये कहा है कि रिजवान और बाबर पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे? और भाई आपकी स्ट्राइक रेट के बारे में बात करते हैं, और ऑब्वियसली जो भी क्रिकेट का खिलाड़ी है उसके पूरे कैरियर में अच्छी बातें भी होती हैं बुरी बातें भी होती हैं, तो इसको इतना दिल पे क्यों ले रही है ये टीम, इतनी टची क्यों हो रही है, क्या लगता है आपको?
यार एक टची वैसे होना तो नहीं चाहिए, और एक जगह ये लोग ये बात करते हैं कि भाई हम लोग सोशल मीडिया वगैरह नहीं देखते ठीक है, हम लोग मीडिया से बिल्कुल साइड पे, फिर वो आगे से इस तरह की बातें करते हैं, और फिर एक और बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि जैसे रिजवान की भी बात करें सकलैन भाई की भी बात करें, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग थोड़ा सा वो रिलीजियस फैक्टर भी ले आते हैं, शायद वो इस वजह से ले आते हैं कि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म ना हो बातों पर, तो इस तरह नहीं करना चाहिए यार, ये तो बड़ा एक अजीब सा सीन है, इसका अगर कंपेरिजन करें हम शान मसूद के साथ, उनसे जब बात की कि आपका मिडल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर रहा है बार बार आप लोग नहीं मतलब, तो उस पर उन्होंने बड़ा अच्छा रिप्लाई किया, उन्होंने कहा कि जी ये तो हमारे पास थोड़ा कुशन मिल गया वर्ल्ड कप से पहले कि हम लोग ट्राई कर सकते हैं ऑप्शंस को, तो इसको हम एज अ ऑप्शन ही कंसिडर करें, बाकी हमारा जो मेन फोकस है मेन फोकस हमारा वर्ल्ड कप है, तो इस तरह का जवाब हो तो फिर पता भी चलता है कि यार प्लेयर सेंसिबल है,
बिल्कुल
सेंसिबल
यार,
आंसर कर रहा है, सुना भी सही है, आंसर भी सही कर रहा है, तो ये एक बड़ी अजीब बात है। बाकी वो फेथ की बात, बार बार फेथ का वर्ड यूज करे थे, अगर आपने नोटिस किया हो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि उनसे जब सवाल किया गया इफ्तखार और खुशदिल की परफॉर्मेंस नहीं जा रही, तो वो कहते हैं मुझे इन पे फेथ है, आपको भी फेथ होना चाहिए। उन्होंने बल्कि ये भी बोला जर्नलिस्ट को कि लगता है कि आप देखते नहीं एक डोमेस्टिक क्रिकेट, कुछ इस तरह की भी बातें की। फिर
हाँ
आगे से
ये बड़ी
सॉरी भी
प्यारी
बोला
बात
उन्होंने,
की उन्होंने कहा
तो खैर
कि,
बड़ा एक अजीब।
उन्होंने कहा चीफ सेलेक्टर से ज्यादा तो आप नहीं देखते होंगे ना, मतलब है डोमेस्टिक क्रिकेट। अब उनसे कोई सवाल कर, वही आपने जो बात की ना, अब हम हमारे प्लेटफॉर्म पे हम रिलीजियस बात नहीं करते, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि अब आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रिलीजन को लाओगे, अब अगर बंदा उसको क्रिटिसाइज कर दे, ठीक है, तो वो क्रिटिसाइज करने वाला भी डरेगा कि यार अब ये कोई ये ना बोल दे कि जी ये तो रिलीजन का हवाला दे रहा है और आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। मतलब ये एक बड़ा डेंजरस कार्ड है कि आप प्रोफेशनलिज्म में, आपने कभी इंडियन प्लेयर को देखा हो कि वो भगवान और उसकी अपनी पूजा शूजा कर रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, ठीक है, या आपने किसी क्रिश्चियन प्लेयर को देखा हो कि वो आके इंटरव्यू से पहले मतलब क्रिश्चियनिटी की बातें करना शुरू कर दे। ये एक प्रोफेशनल दुनिया है, इसमें आपको प्रोफेशनलिज्म थोड़ी दिखानी पड़ेगी आपको। आप ये सहारा नहीं ले सकते कि यार अब रिलीजियस टॉक्स कर दो ताकि हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म ना हो। ठीक है, हम ये नहीं कहते आप बिल्कुल ना बात करो, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो बोलना चाहते हो सब बोलो, अपना कल्चर है, लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहिए। शान मसूद भी तो है ना, वो क्यों स्टैंड आउट हो रहा है, क्यों दुनिया उसकी तारीफ कर रही है कि भाई सेंसिबल बातें कर रहा है, ये नहीं कह रहा रात दिन बारिश घटा हवा, मतलब क्या कह सकते
कुदरत
हैं।
कुदरत कुदरत, दिन रात सुबह शाम, फिर वो इस तरह की एग्जांपल्स भी नहीं दे रहा। ये एग्जांपल तो काफी खैर सुनी हुई थी हमने भी बचपन से ही, तो वो जो उन्होंने दी थी कि बाप और बेटा जा रहे थे एक जगह पे, पहले बेटा बैठा उस वो गधे के ऊपर, कुछ ऐसी एग्जांपल थी ना,
खच्चर के ऊपर,
बैठा
हाँ
तो लोगों ने वो क्रिटिसाइज किया खच्चर के ऊपर, उसने क्रिटिसाइज किया, फिर उसके बाद बेटा बैठा तो लोगों ने बोला बाप को नहीं बिठाया हुआ, फिर जब दोनों पैदल चलना शुरू हो गए, तो खैर ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, ये
बस वो
बड़ा
किसी
एक अजीब है।
और, मेरा ख्याल है किसी और डायमेंशन में चल रहे हैं आजकल, ठीक है, वो सूफीज्म वाली डायमेंशन में चल गए हैं, पता नहीं उनको फिर वो उधर ही जाके कोई काम करें, इधर पता नहीं क्या करें। अच्छा राबी साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम सर जी, आपका क्या
वालेकुम
हाल है,
अस्सलाम,
कैसे मिजाज हैं, ठीक
बिल्कुल
ठाक चल रहे हैं। अच्छा जी नितिन साहब भी कुछ कह रहे हैं, लेट्स सी क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं इनफॉर्मल इंटरव्यू इट
इनफॉर्मल
वॉज।
इंटरव्यू इट वॉज,
यार इनफॉर्मल
ट्रू,
तो
वेरी
था,
ट्रू,
लेकिन
सही
अब
कह रहे हैं
देखो
बिल्कुल।
पूरी अब मीडिया पे कोई चीज़ इस तरीके से इनफॉर्मल रही नहीं है भाई। आपको ना अब हम भी इधर बात कर रहे हैं ना, छोटा सा हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर हम कोई खुद मतलब कोई रिलीजन के हमारे मुंह से कोई बात निकल जाए, छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है। अब आप ये क्रिकेट की बातें कर रहे हो, क्रिकेट पर रो, तो अभी हमारा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बंदे का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू
यार
होता है।
बाकी भी आप मुल्क देखें, सही है, आप ऑस्ट्रेलिया, इंडिया निकाल लें, इवन इंडिया निकाल लें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कहीं पे इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती कि यार आप इस तरह, इवन यार वहां तो जर्नलिस्ट की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। मतलब हमने पाकिस्तान, हमने ये भी देखा डोमेस्टिक लेवल पे जब रमीज राजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसपे वो काफी ज्यादा मतलब बोल देते हैं जर्नलिस्ट को ना,
एग्रेसिव हो
उसकी
जाते
बात
हैं।
इग्नोर कर देते हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में, ये चीज बड़ी खराब है। आप जर्नलिस्ट को भी रिस्पेक्ट करें, आप अच्छे अच्छे तरीके से आंसर करें, और वो उनको आंसर करना भी चाहिए, उनकी पोजीशन ऐसी है।
यार
हम भी
देखो
तो
ना
यार जॉब करते हैं,
अब
तो हम भी तो जलाल, मेरी जरा बात से दिल से निकल रही है कि हम भी तो देखें जॉब करते हैं, हम भी तो अपने काम के लिए आंसरेबल है, ठीक है, तो ये तो पार्ट ऑफ देयर जॉब ही है।
नहीं देखो ना, आप अपने ऑफिस में कभी इस तरह की गुफ्तगू करके तो देखो आपके साथ होती क्या है, यही तो समझ नहीं आती ना। अब मैं इधर यूएस में बैठा हूँ, मैं यूएस में जाके इस तरह की गुफ्तगू करना शुरू कर दूँ तो कोई मुझे इस तरह नहीं बोलेगा कि आप क्यों कर रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली लोग बोलेंगे कि यार अनप्रोफेशनल गुफ्तगू कर रहे हो। मतलब ये नहीं है कि वो गलत बात कर रहे हैं, वो बात ठीक कर रहे होंगे, लेकिन ये बात ड्राइंग रूम में अच्छी लगती है, ये बात मीडिया के सामने इस तरीके से अच्छी नहीं लगती। आप इसको बेटर तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हो, मिसालें दो बेशक, लेकिन ये कहना कि हार को नॉर्मलाइज कर देना, मतलब रोहित शर्मा पे भी बड़ा क्रिटिसिज्म ही होता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जब मैच हारते थे तो ये बोलते थे कि यार इट्स जस्ट अनदर गेम, ठीक है, अब आप या अपने आप को धोखा दे रहे हो या आप प्लेइंग टू द गैलरी कर रहे हो। मतलब हारना, हार को ठीक है, हार जीत होती गेम में, लेकिन फिर हार पे क्रिटिसिज्म होता है ना, फर्क ही होता है, जीत पे आपकी तारीफ होती है, जीत के टाइम पे आप ये नहीं कहते इट्स जस्ट अनदर गेम, ठीक है, उस टाइम बड़े खुश हो रहे होते हैं, उस टाइम सेल्फियां भी लग रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं मेरी जान, ये हार को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, आपको ये एक्सेप्ट
अच्छा
करना चाहिए।
एक और सवाल भी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जेनुइन बात है। एक और बात भी उनसे की गई कि प्लान आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इस बात पे वो ये वाली बात पे भी काफी एग्रेसिव हो गए। कहते हैं जी हाँ जी, आप जैसा सेकंड देखें T20, वहां पे इंग्लैंड के प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुए, थर्ड पे हमारे नहीं हुए। तो लेकिन बड़ा एक अजीब तरीके से ना रूड बिहेवियर में बोला, लेकिन चले
नहीं,
क्या
वो
कह सकते हैं,
नॉर्मलाइज
ये
कर
तो
रहे हैं
मेरी
ना वो
कंट्री
चीज़ों
रही।
को, कि भाई अब इनसे कोई सवाल पूछे, आपने इफ्तिखार से बॉलिंग नहीं करवाई, वो आगे से बोल देंगे कि यार उन्होंने भी तो डॉसन के पूरे ओवर नहीं कराए। मतलब ये कोई बात है करने वाले? ठीक है, मतलब ये तो कोई जवाब नहीं है ना, आपसे जो सवाल हो रहा है आप उसका तमीज़ और तरीके से जवाब दो, आप क्या बात कर रहे हो? मतलब मैं नहीं समझ आई यार, अब रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी समझ नहीं आई, हमने बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात की, बाबर भी किसी और डायमेंशन में चल रहे थे। ये मतलब है, या तो इनको रमीज राजा ने कहा है कि भाई आपने कोई इनको मवाद ही नहीं देना, प्लेइंग टू द गैलरी करो। और वो विराट कोहली रिजीम में देखा था ना, विराट कोहली पे बड़ी क्रिटिसिज्म होती थी कि विराट कोहली बड़ा एग्रेसिवली बात करते थे, रवि शास्त्री और विराट कोहली। तो एंड रिजल्ट क्या
हाँ,
हुआ
बिल्कुल याद
कि
है।
उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। आप मतलब एंड में मतलब एग्जिट कैसा हुआ है विराट कोहली का? ठीक है, वो सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होती गई होती गई होती गई होती गई और वो फिर इतना गंदा एग्जिट हुआ। बट एनीवे,
बिल्कुल, नितिन अहायर कह रहे हैं दे आर डूइंग पेड जॉब, मीडिया हैज राइट टू आस्क क्वेश्चन ऑन फेलियर एंड सक्सेस। बिल्कुल
बिल्कुल
सही
यार,
बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है बिल्कुल, और करना चाहिए। देखते
आप बस एज
हैं अभी
लॉन्ग
जो
एज आप
गवर्नमेंट आती
पर्सनल
है।
ना हो या किसी के साथ बदतमीजी ना करो, तब तक तो आप जो भी क्वेश्चन करो यार, मतलब उनका जवाब मिलना चाहिए आपको। हम भी यही कह रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है।
अच्छा,
फिर
इस
आप ही
मौके पर
यहाँ
जो
पे
लोग देख रहे हैं
टफ।
भाई, आज हमने ना एक थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है। डिफरेंट करने की क्या कोशिश की है कि आज हम मल्टी स्ट्रीमिंग ट्राई कर रहे हैं। अब आई डोंट नो कितना सक्सेसफुल चल रहा है। उमेर साहब, फेसबुक पे चल रहा है कुछ कि नहीं चल रहा?
बिल्कुल यार, हमारा फेसबुक पे भी चल रहा है, हमारा और हमारा ट्विटर पे भी चल रहा है,
हाँ
और जो लोग हमें फेसबुक पे भी फॉलो नहीं कर रहे वहां भी कर लें, ताकि आप हमारे कंटेंट से अपडेटेड रहें। तो ये बड़ी अच्छी
बिल्कुल,
चीज की है।
आज पहली दफ़ा मल्टी स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, फेसबुक पे भी चल रहा है, ट्विटर पे भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है, एंड टेलीग्राम चैनल पे भी आई थिंक हमारे चल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक्स मौजूद हैं, आप जाके चेक ज़रूर करें।
बिल्कुल
क्या बात है भाई राम
बिल्कुल।
रेड्डी साहब, आपकी इंडिया से देख रहे हैं, हैदराबाद से, क्या हाल है आपका?
क्या बात, इंडिया से यार मुझे याद आया, इंडिया का भी मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, बुमराह ने बड़ा अच्छा कमबैक मारा है, बड़ी बड़ी खुशी हुई है। हम लोग लास्ट एपिसोड्स में भी बात की है, बुमराह आए तो इंडिया में, इंडिया की बॉलिंग में जान है, तो बड़ा अच्छा हुआ है उसके आना। क्या ख्याल है?
नहीं, बड़ा अच्छा हुआ यार, बड़े दो तो बड़े ज़बरदस्त यॉर्कर मारे हैं, एक फिंच को जिसपे वो बोल्ड हुए हैं, और एक स्मिथ को मारा है जिसपे स्मिथ साहब को समझ नहीं आई बेचारे की, हील पे लगी जाके, और पेस भी अच्छी थी, 143 तक करा रहे थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़े से, मुझे बल्कि लग रहे थे, मतलब मुझे लग रहा था कि थोड़ी शायद पेस डाउन हो, लेकिन पेस वेस डाउन नहीं हुई बुमराह की, विच इज़ अ गुड साइन। फिर आप देखो अक्षर पटेल की बॉलिंग, वो हम बात कर रहे थे कि अक्षर
भाई
पटेल को हल्का लिया हुआ इन्होंने यार, उस बंदे ने मैच जितवा
बिल्कुल
दिया।
सही बात है। इवन जो पहला मैच हुआ था उस पे भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी उसने, तो मेरे ख्याल में ये तो वर्ल्ड कप के लिए फिक्स हो गया अब। क्या ख्याल है ना, ये अब रिप्लेसमेंट अच्छी बन गई है
हाँ,
जडेजा वाली।
जडेजा की पक्की रिप्लेसमेंट हो गई है। अच्छा जी, MDS अली कह रहे हैं पाकिस्तान टीम में मिडिल ऑर्डर में शोएब मलिक की जरूरत है, आई एम इंडियन। सर, हम भी ये बात कर चुके हैं पिछले काफ़ी एपिसोड्स में, बल्कि जब एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ था तब हमने बात की थी कि एशिया कप में शोएब मलिक की जगह बनती थी, अभी भी बन सकती है और बन सकती थी अगर शोएब मलिक वो ट्वीट ना करते। वो ट्वीट जो है ना, वो काफ़ी
बिल्कुल
कंट्रोवर्शियल हो गया, जो उन्होंने नापसंद और पसंद वाली बात कर दी थी ना, तो वो ज़रा ख़तरनाक ट्वीट हो गया।
अच्छा यार, ये अब जलाल यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है मुझे इस पे, आप भी अपनी सजेशन दें, बल्कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी सजेशन दें कि देखिए शोएब मलिक की हमें जरूरत तब पड़ती थी कि यार आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर रहा है, शोएब मलिक आराम से इनिंग को बिल्ड करेंगे और स्ट्राइक ले लेंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं यार शान मसूद वो रोल अच्छा प्ले कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं इस बारे में कि मलिक की उस तरह अब है जरूरत?
यार दो बंदे चाहिए भाई, मतलब शान के साथ एक और बंदा चाहिए आपको। ठीक है, अब
लेकिन
हम है
स्ट्राइकर चाहिए ना, स्ट्राइकर चाहिए
यार, मुझे एक
जो
बात
140
बताओ
प्लस खेले।
कि स्ट्राइकर का क्या मतलब है? आप शोएब मलिक के स्टैट्स उठा के देखो, लास्ट 2 साल में 140 से ऊपर उसका स्ट्राइक रेट है, हैदर अली से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है उसका, ठीक है? तो
अच्छा
अब
सही
आप
है।
क्या मतलब उसको हैदर अली से एकदम से बेहतर तो नहीं उसको कह सकते?
नहीं नहीं बेहतर तो जाहिर नहीं कह रहे। अच्छा MDS और कह रहे हैं भाई हर आदमी अपनी बात कहने का हकदार है, शोएब की नान में जो बात
मन
उन्होंने
में
कह दिया मन में है जो उन्होंने कह दिया,
यार
यही
देखो,
तो
बात तो आपकी
मसला
ठीक है,
है।
लेकिन एक वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है ना, जब आप किसी जगह जॉब के लिए आप पहले अप्लाई कर रहे हो, और अगर आपने पहले उस कंपनी के बारे में सोशल मीडिया में बदनामी फैलाई हो, तो वो कंपनी आपको क्यों रखेगी, हायर करेगी? या अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हो और आप अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ बातें करना शुरू कर दोगे, तो आपको निकालेंगे ना। तो ये थोड़ा सा मसला तो होता है, डिसिप्लिन का इश्यूज हैं। अब इवन देखो कि शाहीन ने जब इन्होंने 100 किए है, बाबर ने 100 किए, और जब रिजवान ने ये मैच जिताया पिछला, तो शाहीन ने बड़ा एक टॉन्टिंग वे में फ्रस्ट्रेटिंग ट्वीट किया कि भाई अब बोलो, मतलब जो लोग बोल रहे थे ना कि 15 ओवर में मैच फिनिश कर देना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था, इनको इस चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। इन लोगों को ना क्रिकेट से जैसा आपकी शान मसूद ने खेला है ना, लास्ट 2 साल वो परफॉर्मेंस करता रहा है, उसने ना कोई ट्वीट पे बोला, ना कोई मीडिया में आके बोला कि जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। उसने अपने बैट से जवाब दिया, उसने अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया, प्लेयर्स को भी ये करना पड़ेगा। अच्छा जी, शोएब
होना भी
मकसूद के
ऐसे
फिर
चाहिए
फैन
यार।
आए भाई, राबी साहब,
क्या कह रहे हैं
हारिस सोहेल और
अच्छा
शोएब मकसूद जो हैं कहते हैं अच्छे बैट्समैन हैं, वो भी हो सकते हैं उनमें
यार
से
ये
कोई।
बिल्कुल सही बात कर, बिल्कुल सही बात करें। सोहेब मकसूद और हारिस सोहेल बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। अच्छा वो यहाँ पे मैंने आपको वो सिनेरियो बताया था जब मैं जब हम लोग गए थे जब KPL हो रहा था तो मेरी जब गपशप हुई थी हारिस सोहेल के साथ, तो बड़े यार बड़े अच्छे जॉली से तो उनसे बात हुई। मैंने बोला यार हारिस भाई आपकी वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंस चाहिए हमें जो आप आए थे, तो कहते हैं यार बस दुआ करो जान तो लगा रहा हूँ आजकल, तो शुक्र है वो जान हमें थोड़ी नजर आई है। इन्होंने कोई 50s मारी है पिछले अभी
हाँ
कोई
नहीं, इनकी
डोमेस्टिक में
अच्छी
हुआ है।
परफॉर्मेंस रही है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है T20 कप में। कैच वैच छोड़े इन्होंने खैर काफ़ी इजी, लेकिन मतलब बैटिंग में परफॉर्मेंस इनकी सही रही है, और इनकी बारे में बातें भी हो रही हैं कि ये भी अंडर कंसिडरेशन है शायद मिडिल ऑर्डर के लिए, तो वो भी हो सकता है। शोएब मकसूद की तो फिटनेस का इशू थोड़ा सा है, वो एक मैच खेले आई थिंक जिसमें उन्होंने 50 किया है, लेकिन फिटनेस का इशू चल रहा है। अच्छा, क्रिकेट फीवर भाई कह रहे हैं आज के, नो नीड टू ब्रिंग मलिक नाउ, इट्स टाइम टू मेक न्यू सुपरस्टार्स फॉर मिडिल ऑर्डर, और कैन यूज प्लेयर्स विद सम एक्सपीरियंस लाइक शोएब मकसूद, हारिस सोहेल। यार बात आपकी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन शोएब मकसूद और हारिस सोहेल भी कोई बहुत यंग खिलाड़ी तो अब रहे नहीं है सही, जिनके ऊपर आप फ्यूचर की अगर आप बात करो, आपको बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन चाहिए। जिस तरह शकलैन मुश्ताक ने कहा ना कि जी डोमेस्टिक में मोहम्मद वसीम से ज़्यादा तो कोई मैचेस नहीं देखता, तो डोमेस्टिक में शोएब मलिक से बेहतर मिडिल ऑर्डर में परफॉर्मेंस भी किसी की नहीं है, ठीक है? ये भी एक रियलिटी, ये भी एक फैक्ट है, तो आप फैक्ट से तो डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा
यार लेकिन मैं तो इनकी इस बात से थोड़ा एग्री करता हूँ यार कि आपको मतलब मलिक के भी उस तरह जरूरत नहीं है। मलिक आप वही वही बात है कि आप जो आपके जो यंग प्लेयर्स हैं उनको डेवलप करें, और हारिस सोहेल जो हारिस सोहेल है शोएब मकसूद वो शोएब मकसूद का कह सकते हैं, हारिस सोहेल तो मेरे ख्याल में यंग ही है अभी तक यार,
यार, यंग
उनको
प्लेयर्स को
उतना
डेवलप
नहीं
तो
हो।
कर रहे थे आप, पता नहीं चाचू यंग में आते हैं नहीं आते, लेकिन बात यह है कि 2-3 साल
चाचू तो नहीं।
नहीं, 3 सालों से यार यंग प्लेयर्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा ना। आपने हुसैन तल्लत को भी आपने इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर, आपने फहीम अशरफ पे इन्वेस्टमेंट की, आपने इफ्तिखार चाचू पे इन्वेस्टमेंट की, आपने खुशदिल शाह पे इन्वेस्टमेंट की, क्या रिजल्ट मिला अभी तक 2-3 सालों में? लास्ट देखो, हफीज और शोएब मलिक का आर्गूमेंट ठीक होता है। हफीज कहता है कि यार मैं, आप बंदे ना शोएब मलिक को तब सेलेक्ट ना करो जब शोएब मलिक से बेहतर कोई रिप्लेसमेंट उसकी हो, या एटलीस्ट शोएब मलिक जैसी रिप्लेसमेंट हो, वो अभी तक मुझे तो नहीं नजर आ रही पाकिस्तान टीम में। तो ये बात है,
आ जाएगी देखना,
क्रिकेट फीवर भाई बिल्कुल
उम्मीद
लॉन्ग
है
टर्म
आ जाएगी।
सोल्यूशन नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप आपका ना 1.5 महीने बाद है, तो ये मसला है ना।
लेकिन यार मलिक की ऑस्ट्रेलिया में उस तरह परफॉर्मेंस भी नहीं है।
हाँ, तो बाकियों की कहीं पे भी नहीं
नहीं यार, आप बाकी एटलीस्ट वो हारिस सुहेल की तो है, हारिस सुहेल
यार, अब हारिस
सबसे
सोहेल
सही
की है,
खेला।
लेकिन वो तो टीम में नहीं है ना, इस टीम से बात हो रही है ना,
नहीं
बात
उसको
इस
ले
टीम।
आए ना, हम लोग तो डिबेट ये करें ना कि यूं तो मलिक भी टीम में नहीं है, हम तो डिबेट अभी
अच्छा
ये
चलो,
कर रहे हैं कि
डिबेट ये
किसको
कर
होना
लो,
चाहिए।
हारिस सुहेल वर्सेस शोएब मलिक, स्टैट्स और रिकॉर्ड निकाल के देख लो, लास्ट 2 साल के निकाल के देख लो, डिबेट ही नहीं है ना। देखो मलिक और इमाद वसीम के स्टैट्स की
अरे
कोई डिबेट ही नहीं है, ये बायर या तो पॉलिटिक्स या एटीट्यूड की वजह से हैं, अदरवाइज इनसे ऊपर के तो परफॉर्मेंस है ही नहीं भाई पाकिस्तान में। मतलब मलिक से मिडिल ऑर्डर में अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है मुझे बताओ। आजम खान एक ऑप्शन आपके पास आती है स्पिनर्स के अगेंस्ट की, जी वो छक्के छक्के मारता है या ये करता है,
वो फिटनेस फिटनेस का
तो
इशू है इनका।
अच्छा जी। राम रेड्डी साहब कहते हैं इंडिया टॉप 5 रिक्वायर्ड अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एंड क्विक फास्ट बॉलर। इंडिया
इंडियन
टॉप
क्या कह
5
रहे हैं,
रिक्वायर्ड अ
इंडिया
लेफ्ट
टॉप फाइव
हैंडेड
रिक्वायर्ड
बैट्समैन एंड क्विक फास्ट बॉलर। यार देखो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बिल्कुल एक चाहिए तो सही, लेकिन आप वो पंत और डीके का मसला हो गया ना, या अक्षर को भी मेरा तो ख्याल है आप फ्लोटर खिला सकते हो, जैसा पाकिस्तान कभी कभी नवाज को भेज देता है ऊपर, अक्षर बैटिंग तो ठीक कर लेता है। क्विक फास्ट बॉलर
अक्षर
बुमराह
ने
के आने से
जितवाए
हो
भी
जाएगा
है
कुछ।
काफी, अक्षर ने वो मैच भी जितवाया था ना वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ही, कौन सा मैच था वो जिसमें आखिर में 5 ओवर में सही खेल गया था। तो
बिल्कुल
वैसे यार ये कमी वैसे महसूस हुई है इंडिया की लेफ्टियों की, मतलब हिस्ट्री ये भी, हाँ थोड़ी कमी
हिस्टोरिकली तो
है।
बहुत लेफ्ट हैंडर्स आते थे, हमारे पास कम होते थे, इंडिया के पास ज्यादा होते थे, अब हमारे पास ज्यादा हो गए हैं। अच्छा
अच्छा
जी, ये क्या कहते
और क्या,
हैं कि सुहेब मकसूद, हारिस सुहेल ऑल्सो गुड T20 बैट्समैन पाकिस्तान साइड। बिल्कुल सर, ये अच्छे बैट्समैन हैं। नितिन साहब पूछते
नितिन
हैं
कह रहे हैं,
कि, अच्छा पूरा कमेंट नहीं आ रहा क्योंकि कमेंट लंबा है, इधर से पढ़ देता हूँ। वाई देर इज सो
मैं यहां
मच
से पढ़ लेता हूँ।
वाई
व्हाई देर इज सो मच पॉलिटिक्स इन प्लेयर सिलेक्शन इन पाकिस्तान क्रिकेट, लॉट ऑफ टैलेंटेड गाइज डिड नॉट गॉट इनफ चांसेस। बताइए जी, पॉलिटिक्स सियासत।
यार पॉलिटिक्स भी है और थोड़ी सी ना वो भी है, क्या उसे कहते हैं, अब वो हिंद थोड़ा उर्दू का सॉलिड वर्ड आ रहा है तो मैं आपके लिए थोड़ा सा इंग्लिश का वर्ड और वो हिंदी टाइप का वर्ड यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। नााहली को क्या बोलते हैं, इनकॉम्पिटेंस, ठीक है, इनकॉम्पिटेंस भी है यार थोड़ी सी ना, कि राइट मैन राइट पीपल फॉर द राइट जॉब वाला सीन नहीं है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक, सिस्टम उस तरह डेवलप नहीं हुए, हर 2 साल बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं। क्या ख्याल है मेरा आपका?
यार बिल्कुल बात ऐसे ही है, और फिर मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा फेवरेटिज्म भी आ जाती है। इसी बात से जो इन्होंने बात की, इससे मुझे याद आया कि जब PGL की बात हो रही थी, रमीज राजा ने जब बोला कि हम कर रहे हैं, तो जब उसकी एग्जीक्यूशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब एग्जीक्यूशन फेज में है जाहिर है अभी भी, तो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस पर रमीज राजा से क्वेश्चन किया गया कि जी आपने स्टेप तो बड़ा अच्छा ले लिया है PGL करा रहे, लेकिन हम वहां पे फेवरेटिज्म देख रहे हैं कि जो से कोचेज आपने रखे हैं वो अपने प्लेयर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये एक चीज थोड़ी है, और मेरे ख्याल में ये तो रहेगी जब तक काफी चीजें आपकी स्ट्रीमलाइन नहीं होगी,
यार
अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी चीजों पर।
देखो पाकिस्तान में हर जगह के ऊपर कोई भी प्रोफेशन उठा के देख लो, सिफारिश आम है, ठीक है, अगर आप इसे डिनाई तो कर नहीं सकते। हर बंदा अपने किसी करीब रिलेटिव दोस्त यार को फिक्स करने की कोशिश करता है, जो कि पूरी दुनिया में एक हद तक चलता है, इवन US में भी कुछ हद तक चलता है, लेकिन जो है पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, 2 नंबरी कुछ नेक्स्ट लेवल पर ही है हर फील्ड में, तो क्रिकेट भी उससे नहीं बच सकता, क्या कह सकते हैं। अच्छा आपसे पूछ रहे हैं राम रेड्डी साहब कि जी पाकिस्तानी बॉलर्स ने यॉर्कर्स क्यों नहीं ट्राई किए डेथ डेथ के टाइम के ऊपर। मेहर
जी
साहब,
सॉरी आपकी आवाज कट गई थी, क्या कह रहे हैं।
राम रेड्डी साहब पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने यॉर्कर्स क्यों नहीं मारे आखिरी ओवर्स में।
यार ये तो बस वही बता सकते हैं मेरे ख्याल में प्रेशर होगा उन पे थोड़ा।
नहीं मेरा
और
ख्याल
एक
है,
चीज वैसे अच्छी लगी, यॉर्कर्स तो नहीं, हारिस राउफ के आई थिंक आखिरी ओवर में उसने कुछ ट्राई की थी बॉल्स फुल लेंथ पे, था ऐसा।
हारिस रऊफ ने भी ट्राई किए थे, धानी ने ट्राई किए थे, लेकिन वो फुल टॉस से जा रही थी, जिसके ऊपर जो है ना वो, जब आप यॉर्क एक बॉलर अगर यॉर्कर लैंड ना और फुल टॉस हो जाए ना, तो फिर अगली यॉर्कर अटेम्प्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। ये अगर आप भी बॉलिंग कर रहे हो ना, इवन आम मैच में भी, मोहल्ले के मैच में भी,
यार दिलाल
तो एक दफा अगर
साहब
फुल
यार
टॉस पे छक्का
यकीन
पड़
करें,
जाए ना, तो अगली दफा यॉर्कर डालते हुए बंदा ना 2 दफा सोचता है कि यार फिर फुल टॉस चलेगी तो क्या होगा, तो वही मेरा ख्याल हुआ है उनके साथ।
दिलाल साहब यकीन करें, कल बिल्कुल मेरे साथ भी कल ऐसा हुआ कि मैंने पहली बॉल कराई, फुल लेंथ में कराई, उसने मुझे छक्का मार दिया, तो अगली बॉल पे मैंने जब जान लगाई तो फुल टॉस निकल गई। तो फिर मुझे यही बातें याद आ रही थी कि इस तरह ना करो, उस तरह कर लो, तो ये
भाई दिमाग
बिल्कुल।
की गेम है क्रिकेट, जब प्रेशर वाली गेम है भाई, प्रेशर गेम है।
यार अच्छा एक और चीज बड़ी अच्छी लगी, हारिस रऊफ की स्ट्रीक अभी तक कायम है आखिरी ओवर वाली, कि लास्ट ओवर अच्छा करा रहा है। कल का मैच में भी उसने आखिरी ओवर में तकरीबन 7-8 रन खाया, तो ये वाली अच्छी एक पॉजिटिव चीज आई है कल के मैच की।
हाँ नहीं, ओवरऑल हारिस रऊफ कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अच्छा रबी साहब कह रहे हैं मोहम्मद वसीम जूनियर कहाँ पर है यार, वो इंजरी से वापस आया है तो मेरा ख्याल है वो लाहौर वाले मैचेस शायद खेलेगा।
हाँ खिलाएंगे उसको बिल्कुल।
हाँ मायंक अग्रवाल साहब भी यही पूछ रहे हैं कि वसीम जूनियर कहाँ है, वो इंजरी से रिकवरी कर रहा है जो हमें लास्ट पता लगा, लेकिन
लेकिन यार जलाल एक यहाँ पे बल्कि आप लोग भी बताएं जो मैं सुन रहे हैं कि अगर वसीम जूनियर को लाते हैं तो किसकी जगह लाएंगे आपके, ये देखें क्योंकि 3 फास्ट बॉलर तो होंगे ही होंगे ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा तो कोई शक नहीं है इस चीज पर, तो अगर चौथा ऑलराउंडर ये फास्ट बॉलर लाएंगे तो फिर किसकी जगह लाएंगे।
यार ये इसी वजह से मेरा ख्याल है आमिर जमाल को इन्होंने रखा है, पता है जो मोहम्मद वसीम जूनियर है ना, उनकी थिंकिंग ये है, देखो वसीम जूनियर बैटिंग कर लेते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली जो है ना बैटिंग का इतना उनके ऊपर अभी इतना उनको चांस मिला है इंटरनेशनल लेवल पर ना, वो इतना प्रूफ कर सके हैं। मेरा ख्याल है थिंकिंग कहीं ना कहीं आमिर जमाल की ये है, लेकिन अब आमिर जमाल जमाल को खिलाएं तो सही। क्वेश्चन वैलिड है आपका कि शायद मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह ना बन सके, खास तौर पर शादाब अगर फिट होता तो।
बिल्कुल
अच्छा नितिन साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान बॉलर्स विल डू वेरी वेल इन ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप बट बैट्समैन विल स्ट्रगल, नीड फ़खर जमान इन ऑस्ट्रेलिया। यार फ़खर की कोई खबरें शबरें चल रही हैं कि फ़खर शायद मुश्किल है कि रिकवर करे इन टाइम।
यार, ये बिल्कुल मुझे तो लग रहा है जिस तरह हैदर अली परफॉर्म कर रहे तो फखर तो आ जाएंगे, और वैसे भी जिस तरह आप भी अगर मोहम्मद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई थिंक सवेरा पाशा वाला शो पे, तो उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने मतलब अभी भी वो बायसनेस फखर जमान की तरफ ही रखी कि फखर जमान मतलब उनका जो स्टाइल था बात करने का, उसे लग रहा था कि फखर जमान आ जाएगा टीम में
यार
मतलब,
लेकिन अभी
और ऑस्ट्रेलिया में
फिटनेस
मेरे
पे
ख्याल
उसकी
में तो
बात हो रही है कि कुछ, अभी मैंने कल ही सुना है कि वो कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद वो अभी शायद रिकवर ना कर सके टाइम में, टाइमली रिकवर ना कर सके। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ही बाहर हो जाएगा क्योंकि फिटनेस की अभी उसकी पॉजिटिव इतनी खबरें नहीं आ रही, बट एनीवेज अगर आती हैं तो ऑब्वियसली वो शायद मेन स्क्वाड में आ जाए। अच्छा वुडू वुडू बाबू कह रहे हैं, ये कह रही हैं आई डोंट नो, हे ब्रो हे
हे
ब्रो।
ब्रो। हाँ
ओके
जी अच्छा फिर एक और बात भी कह रहे, कल आप कहाँ थे ब्रो?
सर ये
यार
आप
ये
इनसे पूछें,
जलाल
ये इनसे पूछें,
सर
मैंने
मैं
वीडियो के
वाकई
शुरू में बताया
सॉरी
था आपने लेट ज्वाइन किया है, ये बताएं सुमेर साहब कहाँ थे।
बिल्कुल यार सर, पहले तो माजत कल आ नहीं सके, लेकिन यार वो कल मेरा मैच था वहां पे थोड़ी जरा मैंने कमिटमेंट की हुई थी पहले, और इस वजह से नहीं आ सके, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि इस तरह की कमिटमेंट्स ना करें पहले अपने मैच की।
देखिए मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इनको कन्विंस कर लूं कि भाई यूट्यूब वीडियो बना लेते हैं फिर आप मैच ऐच करते रहिएगा, ये कहते हैं नहीं यार मैच मेरा दूर है और मैच ज़रूरी है, जबान दे दिए सलमान भाई
यार
की
वहां
तरह, है कमिटमेंट हो गई अब
यार
तो।
बस वो जुबान भी दी हुई थी प्लस उनको थोड़ी जरूरत भी थी। आजकल पता है वो आजकल मेरी सीजनल बॉलिंग थोड़ी अच्छी हुई भी है, तो इस वजह से शायद वो होता नहीं है कि एक एक फेज आता है आपको थोड़ी इज्जत मिलती है बॉलिंग में, कोई पूछ रहा होता है, फिर एक फेज आता है आपको नहीं पूछता तो अभी बेहतर फेज चल रहा है, तो इंशाल्लाह अगली दफा हम कोशिश करेंगे ऐसी चीजें ना हो।
बिल्कुल जी मायंक अग्रवाल साहब मोहम्मद हसनैन का नाम लिखा है, मोहम्मद हसनैन के बारे में सर आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आई डोंट नो, बट मोहम्मद हसनैन की परफॉर्मेंस के बारे में अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो थोड़ी इनकंसिस्टेंट है, एक मैच में बहुत एक्सेप्शन बॉलिंग कर देते हैं, एक मैच में थोड़ा सा रन ज़्यादा पड़ जाते हैं, धानी का भी यही मसला है, हसनैन का भी यही मसला
यार
है।
धानी का भी यही मसला है बिल्कुल, अभी वही मैं सोच रहा था कि अगर तीसरी ऑप्शन पे जाएंगे ये लोग तो अभी तक स्टैट्स जो हम देखते हैं तो मेरे ख्याल में हसनैन के साथ ये लोग जाएंगे, क्या कहते
वर्ल्ड
हैं?
कप में कह रहे हो?
हाँ वर्ल्ड कप में बोलो।
हाँ अभी तक तो स्क्वाड में भी हसनैन ही है, धानी तो रिजर्व्स में है, लेकिन इनकी कंसिस्टेंसी का मसला तो है यार, अब मेरा हाल है, एक मैच नसीम को भी खिलाएंगे ये भी ना दोबारा। यू आर कंडक्टिंग अ वेरी गुड शो, कीप इट अप। थैंक यू जी नितिन साहब, आपका बहुत शुक्रिया देखने का। लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें भाई अगर आपने नहीं किया तो अगर
बिल्कुल
अच्छा लग
यार,
रहा है तो।
हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ऑडियंस बिल्ड करें और आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें।
अच्छा यार, ये कमेंट्स वाला सीन ना अगली दफ़ा कुछ हमने बेहतर करना है, क्योंकि ये जब कमेंट लंबा आता है ना तो वो गायब हो जाता है, कट जाता है वो। अच्छा, मोहम्मद वसीम अख्तर साहब कहते हैं, क्या पाकिस्तान टीम स्क्वाड में तब्दीली होगी? मिडिल ऑर्डर फ्लॉप है, बेहद फ्लॉप है। यार इस पे हमने काफ़ी
यार
बात
बात
तो
तो
कर ली
बिल्कुल
है
सही है।
वसीम साहब।
अच्छा चले, वसीम भाई से सवाल पूछते हैं पहले। वसीम भाई आप बताएं कि मिडल ऑर्डर में हम लोग कौन से प्लेयर को चेंज करें, दो प्लेयर्स बताएं।
हाँ, दो प्लेयर्स कौन से हैं और उनकी जगह कौन आना चाहिए आपके ख्याल में, ये हमें ज़रा कमेंट करके बताएं ना, फिर पता चलेगा। अच्छा, मयंक भाई कहते हैं कि भाई आपके यूट्यूबर्स मस्त कमाते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के पाकिस्तान का मैच होता है तो। यार अभी
यार
पता नहीं
इस बात पे हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग तो नहीं कमाते फिलहाल। सही,
हम लोग तो
हम
अभी
तो
शौकी
खाली
कर रहे हैं
गपशप
भाई,
करते हैं।
हैं
हम तो हाँ बिल्कुल, तो
पता नहीं है इसका। अच्छा, ये पिछले में भी आए थे आई थिंक, ये आए थे या कौन थे, नगरजुना नेथा। अच्छा ये क्या कह रहे हैं, कमेंट इनका लंबा
ये क्या कह
है,
रहे हैं,
थोड़ा सा शो कर देते हैं
मैं
कटा
पढ़
हुआ।
लेता हूँ। फर्स्ट मैच आफ्टर इंजरी बुमराह इज नेलिंग यॉर्कर्स, इफ ही एंड अश्रीफ बॉल्स एट डेथ, इट्स ऑल इंडिया डेथ बॉलिंग। बिल्कुल आपने जेन्युइन
बिल्कुल
बात की है, यही बात पे हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि अश्रीफ बहुत फिट बॉलर है आपके वो जो डेथ ओवर्स के लिए, और साथ अगर बुमराह आ जाता है फिर तो भाई कमाल हो जाएगा। अब बात आती है कुमार की, कुमार जो जो जो
भूवी।
कुमार है उसको स्टार्ट में, भूवी 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 को ये स्टार्ट में यूटिलाइज करेंगे, स्टार्ट में उसकी अच्छी बॉलिंग है, हर्षल ना आ जाए उसकी जगह।
नहीं, मेरा ख्याल है हर्षल, अब देखो हर्षल और अर्शदीप में से एक खिलाना पड़ेगा ना, दोनों को तो खिला नहीं सकते। मेरा ख्याल है भूवी तो खेलेंगे खेलेंगे, भूवी शुरू के ओवर्स
हाँ
कराएंगे,
एक्सपीरियंस
शायद
है उनका।
डेथ में उनको नहीं कराएंगे। मेरा ख्याल है पहले 3 ओवर दायरे में करा सकते हैं, फिर 15 ओवर से पहले 1 ओवर दोबारा करा लें, फिर एंड में बुमराह और अर्शदीप करा लें,
बिल्कुल
फिर हार्दिक पांड्या भी हैं ही,
बिल्कुल
तो इंडिया की बॉलिंग मेरा मसला में शायद सॉल्व हो ही जाए वर्ल्ड कप तक। अच्छा
बिल्कुल। तो अगला कमेंट वुडो बू जो बड़ी एक हैवी बात कर रहे हैं, तो आया कमेंट आपके पास,
तैमूर
मैंने
मिर्जा भाई का,
नहीं।
यह भी आपका कोई
यार
सामना
ये
तैमूर
तो
मिर्जा भाई से तो नहीं हुआ कोई बॉलिंग के सामने? किसी दिन हुआ तो मुझे लगता है 6 पे 6 पड़ जाने हैं
यार
आपको।
बिल्कुल, बल्कि 6 पे नहीं, मेरे ख्याल में वहां पे मैं 7 बोले करा दूंगा, एक दो नौ बोले भी निकल
गलती से
जाएंगे।
9 बॉल भी निकल ही आएगी। नहीं, इन्होंने अभी एक पॉडकास्ट किया है, मैंने उसकी पूरा तो नहीं देखा, नादिर अली के साथ ना, तो इसमें उन्होंने
अच्छा
बोला है कि
हाँ,
जी
बस
इन्होंने क्लेम किया है कि टेप बॉलर टेप
अच्छा
टेपिया जो बैट्समैन है ना वो हार्ड बॉलर बैट्समैन से कम नहीं है। और इन्होंने ये भी बोला है कि नादिर अली ने पूछा कि क्या आपको चांस दिया जाए अगर हार्ड बॉल में पाकिस्तान टीम में एज अ फिनिशर रोल, तो आप क्या विलिंग होंगे? वो कहता है कि हाँ हमें चांस देना चाहिए। ठीक है, टेप बॉल और हार्ड बॉल का जरा ना कोई चल रहा है गेम, गेम पाकिस्तान में ऑन
चल
हुई
रहा
भी है।
है यार। हाँ ऑन हुई भी है जैसा लग रहा है, लेकिन देखिए मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा डिफरेंट गेम है। हार्ड बॉल की गेम टोटली डिफरेंट है, टेप की गेम टोटली डिफरेंट है। हार्ड बॉल पे टेप पे तो ये है ना कि आपने स्ट्राइक पकड़नी है, जान लगानी है। हार्ड बॉल पे मेरे ख्याल में आपकी जो जजमेंट है और जो आपकी टेक्निक है वो ज्यादा मैटर करती है, तो दोनों डिफरेंट ट्रैक्स हैं।
मायंक भाई ने सब्सक्राइब कर लिया भाई, बहुत शुक्रिया आपका यार। आगे भी हमारे साथ आप शोज वोज देखेगा, डिस्कशन हम लोग कोशिश करते हैं कि जो जो कमेंट कर रहा हो उसके साथ साथ हम डिस्कस करते रहें। अच्छा, जो आप ये तैमूर मिर्ज़ा की बात कर रहे हो ना, उनका पॉइंट ये था कि भाई देखो टेप बॉल में ना पेस हार्ड बॉल से ज़्यादा होती है, तो उसमें आपके रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने टेप बॉलर की बॉल देखो ना, ये हारिस रऊफ जो हमारे हैं ये पहले टेप बॉलर थे ना, अगर ये टेप बॉल पे बॉल कराए ना तो शायद ये 100 माइल से ऊपर बॉल कराएं, क्योंकि बॉल हल्की होती है तो बहुत तेज़ बॉल आती है। तो वो उस लिहाज से वो कह रहे थे कि हमारे रिफ्लेक्सेस बहुत तेज़ होते हैं, शॉर्ट बॉल खेलने का भी मसला नहीं होता, तो वो काफ़ी एक आर्गुमेंट उन्होंने बनाया है। और पाकिस्तान में ना अब टेप बॉल एक कैरियर बनती जा रही है, क्योंकि पैसा आता जा रहा है टेप बॉल में काफ़ी, तो वो भी एक है। अच्छा जी,
सही सही।
नवीद साहब कह रहे हैं, नवीद साहब क्या कह रहे हैं, सकलैन मुश्ताक को ऐसी
सकलैन
बातें नहीं
उस्ताद को
करनी
ऐसी
थी
बातें नहीं
बस सर वो।
यार, बस वो यहाँ पे नवीद भाई को ये बोलेंगे, बस आपको पता है दिन होता है, रात होती है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सकलैन भाई
सही
ने भी बस कुछ ऐसा ही किया।
बात है, को मुझे लगता है
अच्छा
को
कभी जरा जल्दी जल्दी
मिस्टिक की
पढ़े।
मिस्टिसिज्म की जो है ना कोई क्लासेस ले रहे हैं आजकल, मुझे लगता है सदगुरु के साथ कोई लगता है ज्यादा ताल्लुक कायम हो
बिल्कुल
गया। अच्छा
ऐसे
वसीम
ही है।
अख्तर क्या कहते हैं, आप पढ़ दें जरा ऊपर वाला बड़ा
वसीम
वाला।
अख्तर कहते हैं, क्या पीसीबी स्टाफ के अंदर पाकिस्तानी टीम में तब्दीली को लेकर बातचीत चल रही है T20 वर्ल्ड कप से पहले? चल तो रही है, चल तो रही है,
अच्छा अभी इन्होंने
लेकिन
वो
दो
रिप्लेसमेंट
फेज की
भेजी है
बात है।
भाई, इन्होंने रिप्लेसमेंट भेजी है, कहते हैं कि भाई इफ्तखार की जगह शर्जील खान डालें। यार आप देखो भाई मसला ये है ना, शर्जील खान तो मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकता। अब मिडिल ऑर्डर का आपको मिडिल ऑर्डर रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा, बाबर और रिजवान तो विलिंग ही नहीं है ना ओपनिंग छोड़ने में, तो वो तो नहीं छोड़ते। अब शर्जील को आप कहाँ डालोगे, भागा तो भाई से जाता नहीं दरम्यान में, स्पिनर्स के आगे कैसे खेलेगा, ये मसला है ना।
बिल्कुल
अच्छा राबी भाई भी कुछ कह रहे हैं, लेट्स सी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आई इंजॉय योर प्रोग्राम, यू रेस्पेक्ट योर फॉलोअर्स, थैंक्स बोथ ऑफ यू। जी सर, एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, ये भी हो गया। अच्छा मोहम्मद वसीम अख्तर खुश
अच्छा
दिल,
अगला नवीद, आप अभी
अच्छा
कौन से
खुशदिल की
कमेंट
जगह ये कह
कर
रहे हैं साइम अयूब या शोएब मलिक हो सकता है, वही बात है
रहे
साइम
हैं
अयूब
यार?
ओपनर
साइम
है।
अयूब हो, लेकिन साइम अयूब को नीचे ट्राई कर सकते हैं ये लोग, लेकिन ये सब बातें होंगी वर्ल्ड कप के बाद। वर्ल्ड कप से पहले तो कोई सीन ही नहीं है यार, वर्ल्ड कप से पहले तो
यार
कोई
वर्ल्ड कप
सीन
के
नहीं है।
बाद बहुत कुछ चेंज हो जाएगा मेरी जान, वर्ल्ड कप के बाद शायद रिजवान और बाबर की ओपनिंग भी आपको इन्हें देखने को
लेकिन
मिले।
दिलाल, ये आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो ना, मुझे तो लग रहा है आपने माइंड बनाया हुआ है कि पाकिस्तान पहले स्टेज पे आए थे।
यार जो हालात लग रहे हैं वो तो यही लग रहे हैं भाई, अभी तो यही लग रहे हैं, सच तो सच होता है लेकिन सच कड़वा होता है, अभी तक तो यही लग रहे हैं। आपको क्या पाकिस्तान को फेवरेट लग रही है इस टाइम के ऊपर वर्ल्ड कप जीतने वाली, बाबर रिजवान आउट हो जाए तो टीम वाला बट्ठा बैठ जाता है।
यार फेवरेट तो नहीं लग रही, लेकिन एक मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान निकले और साथ इंडिया निकले ग्रुप से। ख्वाहिश है, पेट्रियोटिज्म मेरे अंदर जो नहीं होती, वो हिब्बे वतन
भाई
वो
मोहिब्बे
जरूरी
वतन को
होता
अपने रखो ना अपनी जेब के अंदर फिलहाल, अभी आप बात करो क्रिकेटिंग, जिस तरह वो है ना सगलैन से पूछा था, आप अपना वो जरा कुदरती चीजें पेट्रियोटिज्म साइड पे रखें, टेक्निकल बात
टेक्निकल
करें।
बात है।
यार ये प्यारी बात की आपने
अच्छा
मायंक भाई, ये हम ना काफी अरसे से कह
क्या
रहे हैं
कह
कि
रहे हैं?
शादाब और नवाज को ऊपर बैटिंग करनी चाहिए, ये पता नहीं 2-3 साल से, उस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल तो नहीं था खैर, लेकिन जब भी हम साथ बैठते
लेकिन हम बात करते थे। हाँ
थे बात जब गिरते थे, हम तो शादाब को चौथे पे भी खिलाने के लिए थे कि यार ऐसे शादाब को चौथे पे खिला लो यार, वैसे बाहर तो ठीक है।
सही बात है यार, शायद आप फिफ्थ और सिक्स पोजीशन सही है वैसे उस तरह।
पाक कोच चेंज करना पड़ेगा नवीद साहब कहते हैं, ठीक है यार देखो भाई अब पता नहीं, मुझे तो कोच की आज तक रोल का समझ ही नहीं आई कि क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्या कह सकते हैं भाई, अगर टीम खुश है तो हम खुश हैं यार, लेकिन जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो उससे ज़रा थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स जाती हैं। जमील खान भी कुछ कह रहे हैं,
अच्छा जलाल, अब यहाँ पे आप मुझे एक बात बताएं। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस तो यही होता है ना कि यार जो आपसे सवाल किए जाए टेक्निकल, उसका आंसर टेक्निकल करें,
अच्छा
ठीक
जब
है?
सकलैन
अब प्रेस
मुश्ताक
कॉन्फ्रेंस में
टॉक शो करते थे
प्रेस
तब तो बड़ी
कॉन्फ्रेंस
टेक्निकल बातें करते थे, हैं कि जी एल्बो यहाँ पर हो तो फलाना यहाँ पर हो, नी ये हो तो वो हो, लेकिन अब कहानी थोड़ी सी मुझे लगता है अब वो गुफ्तगू नहीं हो रही, जहाँ पे टेक्निकल सवाल हो वहाँ पे मज़हब आ जाता है, क्या कह सकते हैं। ये जमील खान भी शायद मेरे ख्याल है शर्जील की बात कर रहे हैं, वो भाई बात वही है कि शर्जील ओपनर्स तो आपके फिक्स्ड हुए हैं, वो उधर कोई और ओपनर नहीं आ सकता अब। अच्छा नितिन भाई
बिल्कुल।
कुछ और भी कह रहे हैं,
नितिन नितिन आयर कह रहे हैं, व्हाट शुड बी पाकिस्तान स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट T20 एज दे हैव गुड फास्ट बॉलर्स एक टॉप ऑर्डर स्ट्रगल्ड अगेंस्ट टॉप लेग? यार बड़ी बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आंसर करें जलाल इसका आप।
यार देखो स्ट्रेटजी तो भाई नहीं समझ आ रही। स्ट्रेटजी तो हम पिछले पता नहीं कब से कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग खेल रहे हैं, जो टेम्पलेट है ना हमारा, वो टेम्पलेट ओल्ड स्कूल टेम्पलेट थोड़ा हो गया है। अब आप इंग्लैंड की टीम की देख लो, जो भी मैचेस हुए हैं इसमें, इवन आपने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देख लो, जो पहला वाला मैच था उसमें ऑस्ट्रेलिया चेस करते हुए विकेट्स गिरती गई, लेकिन वो अपना मोमेंटम बरकरार रखा, जो भी अगला प्लेयर आया मारता गया मारता गया। इंग्लैंड की टीम में भी यही हो रहा है, अगर आप इनका रन रेट देखो ना, विकेट गिरने से वो ड्रॉप नहीं हो रहा। पाकिस्तान में मसला ये है कि विकेट गिरती है तो रन रेट जो है ना बिल्कुल ही मतलब गायब हो जाता है, तो इस तरीके से तो नहीं चलेगा। हमें क्या कह सकते हैं यार, बैट्समैन को
मैं
स्टेप
अगर
अप
इस
करना
चीज
पड़ेगा।
पे बिल्कुल ऐड करूं, मैं अगर ऐड करूं तो मैं तो ये बोलूंगा नितिन भाई के पाकिस्तान को वही जो बेसबॉल नैरेटिव है, वो तो खैर टेस्ट मैच का है लेकिन T20 में भी इसी तरह स्ट्राइक रखे और मतलब के हर कोई स्ट्राइक रखे, अपना इम्पैक्ट डाले स्टैट्स के ऊपर, कोई ना जाए।
लेकिन अब ये देखना उमेर, हमारे पास वो उस तरह के प्लेयर्स ही नहीं है ना जो उस तरह खेल सकें, या तो आप बोलो कि भाई वो एट विल छक्के मार सकें, वो तो चक्कर ही नहीं है ना। तो अब आप लिमिटेड प्लेयर्स के साथ
हाँ
अब
वो
क्या कर
चैलेंज है,
सकते
चैलेंज
हैं, यही मसला है ना।
है। हाँ
अच्छा जी, ये क्या कहते हैं, साद, आई थिंक साद सैरी, आई डोंट नो भाई नाम का, आपका नहीं समझ लगी। कुदरत के निजाम सकलैन मुश्ताक के बारे में बोलो भाई, बहुत बोला हमने, आपने अभी लेट ज्वाइन किया है हमें, हमने तो बहुत बोला, रात दिन दिन
देखे
रात
यार
बारिश
कुदरत
हवा
का निजाम
घटा।
ऐसा जिस तरह देखे दिन रात बारिश, अभी शाम को बारिश नहीं थी, अभी देखे मैं देख रहा हूँ बाहर तो बारिश स्टार्ट हो गई है, कुदरत का निजाम।
कुदरत का निजाम है। अच्छा मायक भाई पूछ रहे हैं कि, अच्छा यहां पर लाते हैं तो दरमियान में आ जाता है, वाई पाकिस्तान ए मैच इज नॉट कंडक्टेड लाइक इंडिया ए मैचेस आर कंडक्टेड। यार पहले तो बड़े रेगुलरली हो रहे थे, पहले टूर्स भी हो रहे थे, अब नहीं हो रहे, ये बात बड़ा वैलिड है आपकी, क्योंकि अगर आपको अपनी सेकेंड इलेवन बनानी है तो आपको ए जो है टीम के रेगुलर मैचेस होने चाहिए और वो हर जगह होने चाहिए, मतलब आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह इंडिया करता है, कभी न्यूजीलैंड में होता है, कभी कहीं होता है। तो एक वो पाकिस्तान शाहीन्स की टीम जाती है अक्सर, मतलब टूर जब हो रहा होता है ना पाकिस्तान का, न्यूजीलैंड वगैरह, तो उसके साथ पाकिस्तान शाहीन्स, वो पाकिस्तान ए ही है बेसिकली, उसमें लड़के जाते तो हैं लेकिन वो लड़के कभी खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। हाँ भाई हुमैर साहब, और कोई है कमेंट शॉमेंट?
जी, आप बिल्कुल ये सैड सैरी के बाद आए ये नगर जूना नेता कह रहे हूँ ये हूँ वुड यू चूज बिटवीन पंत एंड डीके? यार मेरा वोट होगा पंत के साथ, जलाल आपका किसके साथ होगा?
यार मेरा वोट तो डीके के साथ होगा, लेकिन अब इसमें डिपेंड करता है कि आपकी टीम क्या करना चाहती है, कॉम्बिनेशन क्या होता है आपका। अब सिर्फ फॉर द सेक ऑफ खब्बा खिलाने के लिए आप पंत को खिलाओ, पंत की कोई परफॉर्मेंस नहीं है यार T20 में, मतलब मुझे कोई भी उसकी परफॉर्मेंस, अभी
यार
इतना चांस मिला उसको, कोई उसकी परफॉर्मेंस नहीं है।
लेकिन मुझे उम्मीद है पंत कर सकता है, पता है
उम्मीद तो फिर
पंत
खुश दिल से भी
एक,
है, फेथ रखो फिर।
नहीं, खुशदिल से तो इतनी उम्मीद नहीं है। नहीं मैं आपको इस तरह बताता हूँ ना, एक तो वो लेफ्टी है ठीक है, वो थोड़ा टफ टाइम दे सकता है बीच वाले स्पिनर्स को,
खुश दिल भी लेफ्टी
और
है।
वैसे भी पंत, लेकिन इन दोनों में फर्क है ना, आप फास्ट देखो, आप इवन टेस्ट मैच में भी देख ले पंत काफी ज्यादा स्ट्राइक पकड़ता
या
है,
टेस्ट को छोड़ो, खुश दिल की
और मुझे
35
लगता
बॉलों
है
पे
यार
100
पंत अच्छा
है।
स्ट्राइकर है। डीके का आप ये देखे ना, डीके की आज के वो साथी पोजीशन पे आ रहा है, वो कितनी बॉले खेल रहा है।
उसका रोल ही वही है, देखो ना एशिया कप में डीके मिस हुआ कि नहीं हुआ, जब आपका वो किसको खिला रहे थे, ये हुडा को खिला रहे थे डीके की जगह पर, हुडा ने आगे कोई परफॉर्मेंस तो नहीं दे सका हुडा उधर, अगर वो डीके को वो बॉलें मिलती तो शायद आपके 15-20 रन पाकिस्तान वाले मैच में भी ज्यादा हो जाते, ठीक है, तो फर्क तो पड़ सकता है। पंत ने अभी तक
अच्छा
कोई
नहीं
परफॉर्मेंस नहीं दी यार, बहुत चांसेस मिले भाई, इंडिया में प्लेयर के पीछे प्लेयर पड़ा हुआ है, संजू सैमसन को आपने स्क्वाड में नहीं रखा, इतने प्लेयर्स हैं पीछे इंडिया में, अब ईशान किशन बाहर है, सब बाहर हैं, तो आप
अच्छा, अगले कमेंट पे आते हैं। नवीद नवीद एमडी नवीद कह रहे इंडिया में भी आजकल सर्दी गर्मी बारिश एक साथ हो रही है, ये भी कुदरत का निजाम है। बिल्कुल जेन्युइन बात है। बूढ़ो कह रहे हैं ब्रो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का पावर हिटिंग कोच होना चाहिए, एग्रेसिव माइंडसेट हो जाएगा। यार एग्रेसिव माइंडसेट के तो कोच अभी भी शॉन ट्रेट बॉलिंग का है, लेकिन
नहीं,
बैटिंग में
पावर
बिल्कुल
हिटिंग में
नहीं।
अब क्या अब्दुल
हाँ
रजाक को डाल सकते हैं, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब अब्दुल रजाक खेलना तो नहीं
अब
शुरू हो
अब्दुल
जाएंगे।
रजाक को तो ना डालना। हाँ बिल्कुल। तो बाकी उसके बाद आया है राबी जावेद का,
यार वैसे
पाकिस्तान
एक इधर
इंग्लैंड
एक पॉइंट,
बांग्लादेश
ये जो
मैच
कोच
हुई।
वाला है ना, कोचिंग में पाकिस्तान टीम में आके भी अगर आपको कोचिंग चाहिए तो फिर यार आपने पता नहीं पूरे कैरियर में किया क्या है। कोचिंग होती है मतलब अंडर 13 लेवल से, वो मैटर करती है आपकी कोचिंग। अब आप 30 30 साल के हो गए हो और आपकी अब कोचिंग, क्या कोचिंग हो सकती है आपकी।
बिल्कुल ऐसा है। अच्छा अभी क्वेश्चन आया है कि ट्राई सीरीज कब स्टार्ट हो रही है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की।
यार ये
आई
हमें भी आपकी
थिंक
तरह क्रिक इन्फो खोल के
अक्टूबर
देखना पड़ेगा। हाँ
अक्टूबर 9th है शायद।
मेरा ख्याल है जैसे ही ये
अच्छा
खत्म
उसके
हो रही
बाद
है
वो
ना,
जो कह रहे
सेम
हैं।
सेम नाइट को, जैसे ही इंग्लैंड वाली सीरीज खत्म हो रही है, या सेम नाइट को या नेक्स्ट डे जो है ना पाकिस्तान की फ्लाइट है, तो इतना टफ
बिल्कुल।
स्केड्यूल है ये।
अच्छा बाकी कमेंट नवीद कह रहे हैं इस टीम से हमारा दिमाग खराब हुआ, हमारा दिमाग खराब हुआ बैठा है। बिल्कुल सही बात है जलाल, आप
बिल्कुल
ऐड करें इस बात पे थोड़ा। जलाल साहब को भी दिमाग खराब है, देखे सुबह 5 बजे उठ गए हैं आज, और बड़ी रिक्वेस्ट की थी इनसे लेकिन चले अच्छा क्या आ गए।
नहीं यार,
अच्छा
अब
मगर
क्या
चले
कह
योर
सकते हैं,
व्यूज ऑन
टीम तो पाकिस्तानी। रोहित
हाँ।
खान साहब आपको भी हेलो यार,
अच्छा
अब
यार
काफी कमेंट पीछे रह गए हम
ये
कमेंट्स में।
नागार्जुना नेता पूछ रहे योर व्यूज ऑन चा। हाँ यार काफी अच्छा ऊपर भी है, सॉरी।
अच्छा
चले
ऊपर
आप
से,
तो देखें अगर ऊपर कोई आ
ऊपर
जाए।
से मैं पढ़ करता जाता हूँ जल्दी। अच्छा एक मिनट, ये
ठीक है
वाला हटा के इंडिया में, अच्छा वो तो हो गया। नहीं यार, अच्छा ये प्रजापति साहब जो है ये कह रहे हैं, अच्छा यार ये अब क्या कह सकते हैं भैया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा वुडू बाऊ ब्रो, मेरे ख्याल में पाकिस्तान, अच्छा ये भी हो गया, पाकिस्तान न्यूजीलैंड, इस टीम से हमारा
ये
दिमाग
भी हो
खराब हो
गया
गया
हो
है।
गया।
योर व्यूज ऑन, अच्छा चाहल से स्टार्ट करते हैं फिर। योर व्यूज ऑन चाहल बीइंग एक्सपेंसिव। यार देखो हमने तो बड़ी बात की थी पिछले वर्ल्ड कप में, उस टाइम पे हमें समझ नहीं आई कि चाहल को निकाला क्यों, और अब इस वर्ल्ड कप से पहले हमें ये समझ नहीं आई कि बिश्नोई को क्यों निकाला। मैं ये नहीं कहता कि चाहल को निकालना चाहिए था वर्ल्ड कप, लेकिन बिश्नोई तो यार, एश्विन की जगह बिश्नोई को डाल सकते थे आई थिंक सो इन द स्क्वाड, ठीक है। रीजन मेरे ख्याल है अश्विन को इस वजह से डाला है कि श्रीलंका के अगेंस्ट या बाकी टीमों के अगेंस्ट जो लेफ्टी जब आ जाता है तो स्ट्रगल करता है चाहल काफ़ी आजकल, और अक्षर पटेल भी क्योंकि अंदर बॉल करता है लेफ्टी के अंदर आती है, लेकिन बिश्नोई तो बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है लेफ्टी को भी यार, उसकी
बहुत
गुगली इतनी
अच्छी
अच्छी
बॉल कर रहा
है।
है बिश्नोई। अभी बिल्कुल वही, अगर हम पाकिस्तान इंडिया के मैच की भी बात करें, पहला मैच खेल रहा था उसको शुरू में भी टफ टाइम पे खिलाया, पावर प्ले के अंदर लेके आए, आखिरी वो डेप्थ ओवर्स में भी उसको दिया ओवर, तो उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। इवन यार पिछली सीरीज जो हुई थी उसमें भी उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई। चाहल का मसला चल रहा है यार आजकल, बड़ा एक्सपेंसिव हुआ हुआ है। अब याद है आपको एशिया कप का, पता नहीं उसका लास्ट मैच था क्या सीन था इंडिया का, कि जिसमें चाहल ने अपनी स्पीड तेज कर दी थी बॉल की थोड़ी,
हाँ अभी भी
मतलब
ये
पहले
ऑस्ट्रेलिया
वो थोड़ी स्लो करा रहे थे।
वाले मैच में भी तेज़ बॉल कर रहा था यार। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया पे ना, क्योंकि ग्राउंड बड़े हैं, शायद चाहल वहाँ पर ना सही कर जाए, क्योंकि वो अगर वो फ्लाइटेड बॉलें उस तरह करे जिसमें वो करता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब वो बैट्समैन अटैक करने की कोशिश करता है ना तो वो आउटसाइड ऑफ स्टंप फेंक देता है फ्लाइटेड डिलीवरी के, रीच आउट कर लो मुझे इस तरह करके ना, तो वो चीज़ नज़र नहीं आई। अच्छा मिस्टर नदीम साहब ने कोई टीम भेजी अपनी, टीम देख ले आपका क्या रिव्यू है। उन्होंने शर्जील और मोहम्मद रिजवान से ओपनिंग कराई है, कहते हैं बाबर आजम टू वन डाउन है, शान मसूद फोर्थ पर हैं, सोहेब मकसूद फिफ्थ पर हैं, इफ्तखार 6 पर हैं, आमिर जमाल 7 पर हैं, शदाब 8 पर हैं, आमिर 9 पर हैं, शाहीन 10 पर हैं, हारिस 11 पर हैं। टीम तो आपकी बड़ी अच्छी है भाई, लेकिन अब इसमें मसला है ना, मसला है कि आमिर शामिर और तो आने से रहे।
आमिर भी आने से रहा, शर्जील भी आने से रहे, ठीक है। उसके बाद आमिर जमाल का भी सीन ऑफ है, ठीक है। और हाँ यही है, सोहेब
फहीम अशरफ के
मकसूद भी खैर ऑफ है।
फाइनेंस मैनेजमेंट कह रहे हैं कि जी फहीम अशरफ, अनवर अली, आसिफ अली, वसीम जूनियर शुड प्ले फॉर T20 वर्ल्ड कप। यार इतने ज़्यादा भाई ऑलराउंडर क्या करने हैं, एक एक ऑलराउंडर बथेरा नहीं इसमें
अनवर
से।
अली भी हाँ बिल्कुल जूनियर सही है, एक ही बंदा। तो जलाल यार बड़ा वो आपको बताया था, थोड़ी काम था, तो आप मेरे ख्याल में कंटिन्यू करें या क्या सीन है?
नहीं
मैं
सर,
जो आपने
आपका
बताया
काम
सर,
है तो हम कल्टी लगा लेते हैं, ये जिनके कमेंट्स रह गए हैं हम कल आना है ना, आप कल, आपकी फिर तो कोई कमिटमेंट नहीं है, पहले बता दें आप।
नहीं, कल नहीं, नहीं कल आपने जो बताया किस टाइम आए उस टाइम आएंगे।
यार कल कल थोड़ा लेट आते हैं, मतलब 9 9 बजे आ जाते हैं पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, क्या कहते हैं?
ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल 9 बजे। और बाकी आप लोग भी आए, और जो जो हमें सुन रहा है एक दफा फिर बोल देता हूँ कि हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप लाजमी उसको एनेबल करें, और साथ साथ हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी हमें फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, और कौन सा है, बस यही है।
यार टेलीग्राम चैनल को भी करें, आज हमने कोशिश ये की है कि हमने ना
हाँ
मल्टी स्ट्रीमिंग स्टार्ट की है, अब पता नहीं कितनी सक्सेसफुल हुई क्योंकि मैंने पीछे देखा नहीं है। हमने जी आज यूट्यूब पे भी स्ट्रीम कर रहे हैं, हम ट्विटर पे भी कर रहे हैं, फेसबुक पे भी कर रहे हैं, हम टेलीग्राम पे भी कर रहे हैं, एक जगह और भी हम शायद कर रहे हैं, वो भी मुझे नहीं समझ आ रही कहाँ कर रहे हैं,
यार
लेकिन कहीं तो कर
बिलाल,
रहे हैं।
नहीं, ये अच्छा है कि सक्सेसफुल हुई भी है, लेकिन इशू ये है कि देख देख अभी खाली मेरे ख्याल में ही देख रहा हूँ उसको, मैं शायद एक्टिव नहीं है फेसबुक पे अभी तक
नहीं, आहिस्ता आहिस्ता
तो
इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगी, हो जाएगी।
चले फिर गप होती है, कल मिलते हैं 9 बजे, सही है?
बिल्कुल सर, अनिल यादव साहब, कासिम खान साहब, आपके कमेंट्स जो है ना हम अगली कल वाली एपिसोड में लेते हैं, कल ज़रूर हमें ज्वाइन करें। अभी उमैर साहब को निकलना है, इन्होंने किसी शादी वादी पे खाना शाना खाना है जाके, आई थिंक, तो इनको ज़रा शादी अटेंड करने
यार
दें,
बस
कल फिर मिलते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है,
चले, ख्याल बिल्कुल, चले
ओके जी,
ख्याल रखें अपना,
ओके
चलो
जी,
फिर बात होती है, ओके
हाफिज़।
लाफ।